हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा, जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव, हिताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबका हार्दिक धन्यवाद आपके बीच में बैठने के लिए, मौका देने के लिए। और आज हमारे भागवत सप्ताह का चौथा दिन है। हरे कृष्णा। हाँ, फोर्थ डे। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में तीसरे अध्याय में 43वां श्लोक में कहा गया है, कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। उज्ज्वल सूर्य की भांति ये श्रीमद् भागवत उदित हो गया है इस दुनिया के क्षितिज के ऊपर, क्योंकि धर्म और ज्ञान के साथ भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए। उस समय अविद्या का अंधकार छा गया, उस अंधकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ है। श्रीमद् भागवत ये वेदों के वेद रूपी वृक्ष पर आया हुआ सबसे अंतिम परिपक्व फल है, और जैसे वृक्ष का सार उसके फल में होता है, और वो फल जब हम पाते हैं तो वृक्ष का सारा अंग जो है वो हम पाने के बराबर है। और श्रीमद् भागवत के बाद में और कोई शास्त्र लिखा नहीं गया है, ये अंतिम अंतिम शास्त्र है। बाकी जो लिखा गया है उसके ऊपर टिप्पणी, टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी लिखी गई है, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो अंतिम शास्त्र है वेद व्यास जी द्वारा निर्मित। और उनके गुरुदेव नारद मुनि के अनुसार जो भी उन्होंने लिखा उसकी परिपूर्ति श्रीमद् भागवत में हुई है, इसलिए श्रीमद् भागवत यह सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। अमलम पुराणम है, इसमें कोई मल नहीं है। मल का मतलब कोई सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा दूषित कोई बात नहीं है इसके अंदर, केवल दिव्य यानी ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर पर ही बातें की गई है। आत्मस्तर पर आत्मकल्याण के लिए ही सब मल से रहित ऐसे बातें इसमें की गई है। एक नौसिखिया भक्त के से लेकर परमहंस स्थिति में जो भक्त हैं, परमोच्च स्थिति में, वो सबके लिए यहाँ पर कल्याणकारी बातें की गई है। तो हमारा बड़ा भाग्य है क्योंकि ये सर्वोच्च शास्त्र हम यहाँ पर सुन रहे हैं, और अनेक जन्मों के पुण्य और सुकृति के बाद में श्रीमद् भागवत का परिचय होता है, ये बात निश्चित है। जो सुकृति से युक्त नहीं है, पुण्य से युक्त नहीं है, वो भागवत का उनका परिचय भी नहीं हो सकता है। और हमारा ये परम भाग्य है कि हमारा संत जनों के माध्यम से श्रीमद् भागवत का परिचय हो चुका है। लेकिन परिचय केवल पर्याप्त नहीं है, परिचय तो पुराने कामों का फल है। परिचय होने के बाद में उसमें रुचि लेना, उसका हृदय से श्रवण करना, और वही जीवन पद्धति जो हम सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना, ये श्रीमद् भागवत का परिचय होने का परिणाम हम कह सकते हैं जो हमको इस जीवन में प्राप्त करना है। और जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने पिताजी को 11वें स्कंद के वर्णन में बताते हैं, जब कुरुक्षेत्र में उनका मिलन हुआ और कुरुक्षेत्र में यज्ञ होने का निर्णय हुआ, तो यज्ञ में सारे संतजन इकट्ठा हुए, तो उसमें संतजनों का आगमन जब हो रहा था, तब श्री कृष्ण भगवान ये कथा का जो महात्म्य है, संतों के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसका महात्म्य बताते हैं। वो कहते हैं कि हम एक साथ में कभी एक पवित्र स्थान पर रह सकते हैं, मथुरा जगन्नाथपुरी, एक साथ में एक नदी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन जब कथा होती है, भगवान की कथा होती है, तो उस जगह पर जहाँ कथा हो रही है उस जगह पर एक साथ में सप्त समुद्र, सप्त द्वीप, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सारी नदियाँ, पर्वत, सरोवर, कुंड, सब संतगण यानी व्यास, नारद मुनि आदि मुनिगण सब उपस्थित हो जाते हैं। तो एक कथा में बैठने से सभी तीर्थों का, स्थानों का, महात्माओं का दर्शन एवं कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कथा, अगर आपको दो चॉइस दिए जाए कि आपको भी एक स्थान का दर्शन करा के वहाँ के महिमा सुन के आना है, या तो एक नदी में स्नान कर सकते हैं आप जाके और आप कथा में बैठ सकते हैं, आपको हमेशा कथा ही चयन करना चाहिए, क्योंकि कथा में बैठने से सारी चीज़ों का एक साथ लाभ होता है। और अगर कथा हो रही है और कोई भी श्रोतागण नहीं है, फिर भी उसमें नारद मुनि, व्यासदेव, हनुमान जी रहते ही हैं, ये बात निश्चित समझना। जहाँ पर कथा प्रामाणिक भाव से कही जा रही है, सुनी जा रही है, वहाँ पर नारद मुनि जी, व्यासदेव जी, ये सब उपस्थित रहते हैं, इसलिए उनका भी संग अदृश्य रूप से सबको प्राप्त होते रहता है। भगवान कहते हैं कि अर्च विग्रह, जो हमारे ठाकुर जी का विग्रह है, उसका पूजन भी 6 महत्वपूर्ण भक्ति विधियों से एक है, एक महत्वपूर्ण विधि है, और नाम जप भी एक महत्वपूर्ण विधि है, तुलसी पूजा है, धाम का निवास है। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि इन सब चीज़ों को करने से धीरे धीरे आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। बड़ी लगन के साथ करेंगे, बड़े दिल के साथ करेंगे, बहुत समय तक करेंगे, एक सातत्य से करेंगे, तो धीरे धीरे इसकी द्वारा आत्मवृत्त शुद्धि प्राप्त होती है। लेकिन कथा श्रवण से बहुत जल्द, ब्राह्मणों के, संतों के संग में कथा श्रवण करने से बहुत तेजी से आत्मशुद्धि होती है। एनीवेज, तो आज का कथा प्रसंग श्री कृष्ण भगवान का जन्म है, जो हमारे लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान इस विश्व में आते हैं, उन्हें कोई आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने लोग उनके साथ गोलोक में रहते हैं, जितने अनंत लोग रहते हैं, वो भी परमोच्च शुद्ध भक्त रहते हैं उनके साथ, और दिन रात हर क्षण उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करते रहते हैं। लेकिन उन्हें हमारी बहुत चिंता लगी रहती है कि हम उनको छोड़कर यहाँ पर आए हैं, शरीर धारण करके, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ऐसे कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, आत्म क्लेश, दूसरों के द्वारा क्लेश, प्रकृति के द्वारा क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, त्रिगुणों के द्वारा प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उनको हमारी बहुत याद आती रहती है, बहुत करुणा अनुभव करते हैं, इसलिए वो हमारे कल्याण के लिए आते हैं। जैसे कि राजा जेल में आता है, तो जेल में किसको मिलता है? केवल कैदियों को मिलता है, संतों को जेल में मुलाकात नहीं होती है, लेकिन फिर भी संत जाते हैं जेल में, और भगवान भी इस जेल में आते हैं, दुर्ग यानी भौतिक दुनिया में आते हैं, जहाँ पर सब लोग बद्ध हैं 3 गुणों के बंधन से और 4 क्लेशों के बंधन में। तो हमें भगवान का परम धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बिना आवश्यकता से वो स्वयं करुणावश यहाँ पर आते हैं। तो कैसे आते हैं? तो बहुत बहाने बनाते हैं, वैसे बहुत सारे कारण हैं उसके। तो पृथ्वी राक्षसों के पापों के भार से दुखी हो गई, फिर ब्रह्मा जी के पास गाय बनकर गई, ब्रह्मा जी उनको क्षीर सागर में ले गए, और क्षीर सागर से, गर्गन संहिता में लिखा है कि जो क्षीर सागर के भगवान है, क्षीरोदकशायी विष्णु, उन्हें गौलोक वृंदावन ले जाते हैं। बड़ी अद्भुत बात है ये, और वहाँ पर भगवान वादा करते हैं कि हम आएंगे, आप निश्चिंत रहो, सबको आदेश दे देते हैं कि आप अपना अपना पोजीशन ले लो, मथुरा में, वृंदावन में, वृष्णि वंश, कुरु वंश, यदुवंश, इसमें अपने अपने स्थान ग्रहण करो, मैं जल्दी आऊँगा। तो भगवान आश्वासन देते हैं, और योग माया को उस समय आदेश देते हैं कि जब मैं आऊँगा, उस मेरे पहले मेरे बड़े भाई बलराम जी आएंगे, उनको आप देवकी के गर्भ से संकर्षित करना और रोहिणी के गर्भ में स्थापन करना, और इस दिव्य कार्य के लिए मैं आपको मेरी बहन बनाऊंगा, और मेरे साथ में एक ही गर्भ में हम निवास करेंगे। तो आप सब लोग कहानी जानते हैं, विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाल लीलाओं का वर्णन करना है आज। तो यथावकाश देवकी के 6 पुत्रों का कंस नाश करता है, आप जानते हैं, कारागृह में डालकर। विवाह का प्रसंग भी आप जानते हैं कि विवाह प्रसंग में कैसे बालों को पकड़कर, तलवार निकालकर उसने अपने बहन को मारना चाहा। वसुदेव ने समझाया, वादा किया कि मैं पुत्रों को वापस आपके पास ला दूंगा। वसुदेव बड़े सत्यवचनी थे, विश्व में विख्यात थे, उनका वचन कभी भी विश्व में विख्यात थे, वो वचन पालने में, इसलिए वो कंस भी मान गए, तुरंत चले गए। फिर एक एक पुत्र करके लाके दिए उन्होंने, अपने सत्यवचनी स्वभाव को सिद्ध किया। सातवें गर्भ के रूप में बलराम जी अनंत शेष के रूप में प्रकट हुए देवकी के गर्भ में, और योग माया ने उसका संकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया। इसमें रहस्य की बात यह है कि रोहिणी पहले से ही गर्भवती थी, और ये कंस के आतंक के वजह से उन्हें पहले से ही अपने दोस्त नंद महाराज के घर में वसुदेव ने भेज दिया था। इसका मतलब पहले से ही वो गर्भवती थी, और उनके गर्भ में कौन थे? मूल बलराम जी महाराज, जो भगवान के पहले पहले अवतार, लीला अवतार हैं। और जो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए वो अनंत शेष अवतार हैं, उनके उनके अंश हैं। तो ये अनंत शेष जो थे वो रोहिणी के गर्भ में जो बलराम जी थे उनमें एक रूप हो गए, और यहाँ पर देवकी को अनुभव हुआ कि गर्भपात हुआ। उसके बाद में भगवान देवकी नंदन भगवान, ऐश्वर्य संपन्न भगवान देवकी के गर्भ में आठवें गर्भ के रूप में प्रकट हुए। और हम जानते हैं कि जब आठवें गर्भ के रूप में देवकी के भगवान प्रकट हुए तो पृथ्वी में बहुत दिव्य लक्षण प्रकट हो गए। रोहिणी का रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ द्वितीय चरण में। हर एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो द्वितीय चरण में भगवान का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से। उस समय अष्टमी थी तो चंद्रमा आदि थे, जानते ना आप अष्टमी का चंद्र देखा होगा आपने। लेकिन भगवान चंद्रवंश में अवतार ले रहे हैं, राधा रानी और प्रभु रामचंद्र जो है वो सूर्यवंश में जन्म लिया उन्होंने। तो चंद्रमा जो थे कहते कि मेरे जन्म वंश में भगवान अवतार ले रहे हैं तो मुझे आधा मैं कैसे रहूं, मुझे पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण मेरा जो गौरव है या सौंदर्य है पूर्ण प्रकट करना चाहिए। तो एक ही बार पूरे इतिहास में, समय के इतिहास में, अष्टमी के दिन आधा चांद के जगह पर पूर्ण चंद्र हो गया। फिर रात को कभी कमल खिलते हैं क्या, फूल खिलते हैं क्या रात को? सब मुरझा जाते हैं, दिन में फिर दोबारा खुलते हैं। सारे फूल रात को खिल गए, सारे जलाशय कुंडों में कमल खिल गए, सोए हुए सब पक्षी जागृत हो गए। हाँ, कौन कौन कहूँ, कोयल, भंवरे, मोर, चक्रवाक आदि सुंदर सुंदर ध्वनि करने वाले पक्षी जागृत हो गए और अपना सुंदर किलरव करने लगे। और जो भय से युक्त थे साधु सब लोग, कंस के भय से यज्ञ वज्ञ करना बंद कर दिया था उन्होंने, उनके मुख से कोई श्लोक निकलने के लिए उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक भय मुक्त हो गए वो, बीच रात में उठ गए और उन्होंने यज्ञ कुंड जलाना शुरू किया और अग्नि प्रज्वलित करके मंत्रों का घोष निर्भय होकर करना शुरू किया। उसके बाद में इसका कारण क्या है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने आप ही भय नष्ट हो जाता है, हम सब भय मुक्त हो जाते हैं। हम सब लोग भय से ग्रस्त हैं लेकिन भगवान का उदय हमारे हृदय में जब होता है तो सबसे पहले भय वहां से भाग जाता है। सत्वगुण, शांति और सौंदर्य का प्रकाश हुआ और सब जगह विकास हुआ। नदियों में और कुंडियों के जल स्वच्छ हो गए, सब जगह जितने जलाशय थे वो स्वच्छ हो गए। मंद मंद सुगंधित और शीतल वायु सब जगह घूमने लगी। कैसे? खिले हुए फूलों से सुंदर सुगंधी पुकेसर हवा के साथ चल रहे हैं, और हवा जो जल है ना उसके ऊपर 4 फीट तक एक बाष्प रहता है ठंडक वाला, तो बाष्प लेकर, पुकेसर लेकर, सुगंध लेकर मंद मंद शीतल हवा सब जगह बहने लगी। आकाश में देवताओं के द्वारा दुंदुभियों का वादन हुआ सब जगह पर सातत्य से। देव ऋषियों द्वारा, विमानों के द्वारा जा जाकर बार बार आकर पुष्प वृष्टि मथुरा में होने लगी। एक जगह कंस है मथुरा में, लेकिन कंस और राक्षसों के होने के बावजूद भी कृष्ण का अवतार होने पर कंस के मथुरा नगरी पर पुष्प वृष्टि लगातार होती रही। जा जाकर भर भर कर पुनः पुनः विमानों से देव और ऋषि गणों ने पुष्प वृष्टि की। गंधर्व और किन्नरों ने गायन शुरू किया, सिद्ध और चारणों ने प्रार्थनाएं गाना शुरू कर दिया। ये सब जो देवता है ना वो अपने अपने संगीत के विषय में, अपने अपने विषय में निपुण है। कोई गायन में निपुण है, कोई नृत्य में निपुण है, कोई वाद्य में निपुण है। इस प्रकार से गंधर्व किन्नर गायन गाने लगे, सिद्ध और चारण प्रार्थनाएं गाने लगे, विद्याधर और अप्सराएं मिलकर नृत्य करने लगे आकाश में, और बादल मंद मंद गड़गड़ाहट करने लगे, प्रसन्न गड़गड़ाहट और प्रसन्न मंद मंद बूंदों को वर्षा करने लगे। उस समय श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से, हाँ, हमारे जैसे नहीं, दिव्य रूप से सामने प्रकट हो गए 4 भुजाओं वाले भगवान। कैसे दिख रहे थे वो? सुखदेव जी बड़े सुंदर काव्य में, भाष्य में वर्णन करते हैं, उनके नयन कमलों जैसे, कमल जैसे थे, कान तक फैले हुए थे, दिव्य चक्षु, वो चतुर्भुज थे, शंख चक्र पद्म गदा से विभूषित थे, वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था, कंठ पर कौस्तुभ मणि था, कटी यानी कमर पर पीताम्बर था, और उनके जो बाल थे वो घुंघराले, बहुत घने और विस्तार रूप से कंधों तक फैले हुए थे। वैद्योर मणियों का उनका मुकुट और उनके कुंडल थे जो जिस प्रकार से हिल रहे थे उसकी प्रकाश उनके गालों पर गिर रही थी। उनका वर्ण सांवला था घना बादल की तरह और उसमें वो वैद्योर मणि के जो कुंडल थे उसकी प्रकाश परावर्तित होकर उनके गालों की शोभा बढ़ा रहा था। और चमकती हुई कमर कांचनी यानी कि वेस्ट बेल्ट, बाजूबंद, कलाई बंद, अंगूठियाँ, घुंघरू आदि सुंदर सुंदर अलंकार उनके शरीर को शोभा दे रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो उनकी शरीर की आभा इतनी दिव्य थी कि कंस का काल कोठरी वाला जो कारागृह था वो प्रकाश प्रकाशित हो गया। और अलंकारों की शोभा भगवान के ऊपर होने से बढ़ने लगी, बढ़ रही थी। भगवान की शोभा अलंकारों से नहीं बढ़ रही थी, ये विशेष बात समझने जैसी है। फिर भगवान ने बहुत लंबा संवाद किया अपने माता पिता के साथ, उनको आश्वासन दिया कि मैं वही हूँ जिसके लिए आप तपस्या कर चुके हैं, वही मैं पृश्नि गर्भ के रूप में पहले आपके आप आया था, वही मैं वामन देव के रूप में आपके पास आया था, अभी मैं कृष्ण के रूप में आपके पास आया हूँ, वही भगवान हूँ। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो कंस से भयभीत थे, उनको भय मुक्त करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया और फिर आदेश दिया कि मुझे गोकुल ले चलो। तो जैसे ही उन्हें आदेश दिया वो दो भुजा वाले छोटे से बालक बन गए। इसमें वसुदेव का जो वात्सल्य है उससे देवकी का वात्सल्य श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वसुदेव भगवान को देखते ही भय मुक्त हो गए, लेकिन देवकी भगवान को देखने के बाद भी बार बार बोल रही तुम इतने बड़े रूप में मत आना, खाई कंस देख लेगा तो कहीं तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम छोटे से बालक रूप में आना, मैं तुम्हें गोद में छुपा लूंगी। तो उनका वात्सल्य जो है ना वो वसुदेव से ज्यादा है, इसलिए वात्सल्य के लिस्ट में वो वसुदेव के भी ऊपर आती है। तो उस समय जैसे ही उन्होंने आदेश दिया बालक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने उनको स्तनपान कराया, पहली बार और एक ही बार, ओनली वन टाइम। उस समय सब साखलियां जो बांध के रखी थी वो सब टूट गई, जितने भी ताले लगाए थे वो टूट गए, जितने भी दरवाजे थे वो खुल गए, और जितने पहरेदार थे वो योग माया के प्रभाव से सब निद्रिस्त हो गए। जो जिनको आदेश था और ट्रेनिंग था कि जरा सा खट भी हो जाए तो मुझे खबर करना है, ऐसे सब पहरेदार सो गए, एकदम गहरी नींद में हो गए। तो वसुदेव जी उनको टोकरी में लेकर निकले, जैसे निकले उनके पीछे अनंत शेष प्रकट हो गए। आचार्य बताते हैं कि जब भी श्री कृष्ण को हम अपनाते हैं उस समय अनंत शेष हमारे पीछे पीछे आते हैं रक्षा करने के लिए। जो कृष्ण को सीने में धारण करते हैं उन्हें बलराम जी अनंत शेष का संरक्षण हमेशा प्राप्त होता है, इसलिए हमें भय नहीं करना चाहिए जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं। हमारे पास केवल बलदेव जी का संरक्षण नहीं है, सभी देवी देवताओं का और संतों का भी संरक्षण रहता है, इसलिए भक्त जो है वो जैसे ही भगवान की शरण लेता है वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, अभय चरणारविंद रे। तो जमुना जो है वो तभी भगवान का इंतजार कर रही थी। हाँ, गौलोक धाम से 1 लाख पहियों के रथ में बैठकर हजारों लाखों सखियों के साथ विरजा को पार करते हुए स्वर्ग लोकों ब्रह्म लोकों से लेकर स्वर्ग को पार करते हुए पृथ्वी पर आकर पहले से ही रेडी थी वो। जैसे भगवान बाहर आए उनके किनारे में आए तो एकदम बढ़ गई पानी, वृद्धि हो गई, इतनी वृद्धि हो गई कि ऊपर 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 आने लगी। वसुदेव जी पानी में उतरने लगे, ऊपर 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 आने लगी, तो वसुदेव जी डूब गए उसके अंदर। भगवान ने अपने चरण कमल बाहर निकाले और यमुना जी को अपने पैरों का स्पर्श दिया। एक जगह पर ऐसा लिखा है, दूसरी जगह पर ऐसा लिखा है कि भगवान वसुदेव के टोकरी से पानी में गिर गए। वसुदेव जी चिल्लाते रहे, कोई लो कोई लो, मेरे लाला को लो, बचाओ बचाओ, मेरा बालक गिर गया है। इसका मतलब भगवान ने आते ही यमुना जी में स्नान किया, यमुना जी को अंग संग दिया, यमुना जी को जल अपना चरणामृत बना दिया। कितना जमुना जी को चाहते भगवान, कितनी लीलाएं भगवान ने जमुना जी की, जमुना जी के सानिध्य में, किनारे में, अंदर बाहर सब जगह की है। तो जैसे ही भगवान का जमुना जी में प्रवेश हुआ, जमुना जी ने रास्ता दिया, सुदेव ने भगवान को पकड़ा अपने टोकरी में डाला, फिर वो ले गए और नंद भवन पहुंच गए। हाँ, यहाँ पर हमारा अंक 1 समाप्त होता है, अभी अंक 2 की शुरुआत करते हैं। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड में जाके, हम जानते हैं नंद महाराज नंदगांव में निवास करते हैं, परजन्य महाराज के पुत्र हैं, वो मंझले पुत्र हैं, 5 भाइयों में से बीच वाले भाई हैं। इतने सद्गुण संपन्न थे वो कि उपनंद उनके सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे, उनको परजन्य बाबा ने राज्य दिया अपना, फिर भी परजन्य बाबा ने नंदगांव बाबा को अपना राज्य सौंप दिया। कभी सुना है आपने ऐसा? बड़े भाई को राज्य प्राप्त होता है और वो अपने दिल से छोटे भाई को दे देता है। यहाँ तो इतिहास ऐसा है कि जिसको प्राप्त होता है उसको मार कर दूसरे छीन लेते हैं उसको ऐसा इतिहास है। लेकिन नंद बाबा का जो, नंद महाराज के जो गुण थे वो इतने इतने दिव्य थे कि सारे भाई उन पर एक तरह से फिदा थे। और उपनंद महाराज ने हृदय से प्रेम से उनको राज्य अर्पण किया और नाना कहते हुए भी फिर सबके आग्रह से उन्होंने स्वीकार किया उसको। इतनी समृद्धि थी क्योंकि इतने दिव्य भक्त थे भगवान के। वो तो 85 वर्ष की आयु हुई फिर भी उनको पुत्र संतान प्राप्ति नहीं हुई। वहां पर विश्वानु महाराज थे नंदगांव के पास में बरसाने में, वो कंज भानु के 9 पुत्रों में से बीच के पुत्र थे। उनकी भी कहानी यही थी, उनके बड़े पुत्र को राज्य दिया गया लेकिन उन्होंने विश्वभानु महाराज को सौंप दिया, इसी कारण दिव्य गुण होने के कारण। दोनों को संतान नहीं, दोनों की आयु बहुत इससे 85 के ऊपर हो गई थी। दोनों ने निर्णय किया कि हम ना यमुना किनारे जाएंगे, तो यमुना किनारा बहुत पवित्र है, उनके सान्निध्य में संतान प्राप्ति हो सकती है। और वहां पर वो रोज अपने कुंड में स्नान करते थे, यमुना जी में स्नान करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बड़ी उड़ी उम्र थी उनकी, रोज यमुना जी में स्नान, एक दिन थोड़ा लेट हो गया उनको जाने में। तो जब वो जा रहे थे यमुना की ओर तो सभी जितने भी साधुगण थे वो अपने अपने झोपड़ी में प्रभाती कर रहे थे, यानी कोई दातून कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक साथ में सब लोग ऐसे प्रभाती करते हुए मिले। और ये जा रहे थे, सबको दंडवत दंडवत महाराज जी ऐसे किया उन्होंने, तो सब साधुओं ने एक साथ वरदान दिया, उत्स्फूर्त हृदय स्फूर्त, कोई विचार करने का कोई कारण नहीं है इसमें, एकदम हृदय से आशीर्वाद दिया, नंद महाराज पुत्रवान भव। नंद महाराज ने कहा धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन ये तो कोई आयु नहीं है पुत्र प्राप्ति करने की। तो सब संतों ने कहा कि हमने कोई सोच समझ के आपको आशीर्वाद नहीं दिया है, ये तो हृदय से आया है। और आश्चर्य की बात हमारे लिए भी है, जब हम कह रहे थे तो बाकी सब लोगों ने भी एक साथ में कहा। तो जब सोच समझ के आशीर्वाद देते हैं तो उसको पूर्ति होने में समय भी लगता है और कुछ निश्चिति भी नहीं होती है, लेकिन जब हृदय से आशीर्वाद आता है तो वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। ऐसे उन्होंने नंद महाराज को आश्वासन दिया, उन्होंने कहा धन्यवाद आपकी जैसी इच्छा है। लेकिन जब साधुओं ने ये सोचा कि हमने कैसे आशीर्वाद दे दिया ऐसे, तो लोगों को थोड़ा सा चिंता हो गई कि हमने आशीर्वाद दिया अगर पूरा नहीं हुआ तो ब्राह्मणों का क्या वैल्यू रहेगा। तो वो अपने शांडिल्य मुनि के पास सब लोग गए, उनका हमने ऐसे ऐसे हुआ, सुबह आशीर्वाद दिया, अब ये सच कैसे होगा आप बताइए, कुछ उपाय कीजिए, ब्राह्मणों का जो आदर है वो कम हो जाएगा अगर हमारा शब्द पूरा नहीं हुआ। तो शांडिल्य मुनि ने कहा कि हमें गोपाल यज्ञ करना चाहिए, और उस गोपाल यज्ञ में गोपाल मंत्र की 18,000 कोटि आहुति उस यज्ञ में अर्पण करनी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत गोपाल यज्ञ का आरंभ किया और सब संतों ने बैठकर 18,000 कोटि आहुति अर्पण की। जब ये आहुतियां समाप्त हुई तो वो दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, उस समय उस यज्ञ से आखिरी आहुति अर्पण होने के बाद में नील तेज प्रकट हुआ, सबके सामने वो आकाश में गया और सबके सामने नीचे आकर नंद बाबा के गोद में स्थिर हो गया। उसके बाद कुछ क्षण के बाद नंद बाबा के गोद से निकला, यशोदी बाबा यशोदा मैया की गोद में गया और उसके शरीर में समा गया, समाहित हो गया। और उस समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन यशोदा देवी गर्भवती हो गई। ये विशेष कहानी है। और आप लगा लीजिए कार्तिक पूर्णिमा के बाद में 9 महीने का समय, आपको फिर जन्माष्टमी का डेट मिलेगा और इस प्रकार से फिर जिस दिन वहां पर श्री कृष्ण का जन्म द्वितीय चरण पुनर्ोहिणी के नक्षत्र में हुआ, उसमें तृतीय चरण में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ यशोदा के गर्भ से। और अंतर क्या है इसमें, जो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए वो देवकी नंदन जो कृष्ण थे वो चतुर्भुज ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण थे, और यशोदा के गर्भ में जो प्रकट हुए वो गौलोकवासी द्विभुज माधुर्य संपन्न कृष्ण थे। तो उनके साथ में योग माया भी जन्म प्राप्त करती है, दोनों एक साथ में गर्भ में प्रवेश करते हैं और यशोदा माई को श्री कृष्ण और योग माया दोनों प्राप्त होते हैं। लेकिन वो भगवान की इच्छा से योग माया के प्रभाव से इतनी ग्लानी आती है कि जन्म देने के बाद में तुरंत वो सो जाती है। ये भी देखने के लिए उसमें शक्ति होती नहीं कि क्या हुआ है, एक हुआ है कि दो हुआ है कि लड़का हुई कि लड़की हुई है, उसको पता नहीं होता है भगवान की इच्छा से सब लोग सो जाते हैं। दाई जो है वो जितने भी गोपियां हैं वो सब सो जाते हैं। और उसके बीच में क्या होता है, नंद वसुदेव जी आते हैं, सब सोए रहते हैं, वो सीधे गर्भगृह में अंदर प्रवेश करते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रसूति गृह में। वहां पर जो बालक अपने हाथ में है उनको रखते हैं, वो रखते ही उस बालक में ये बालक एक रूप हो जाता है, देवकी नंदन यशोदा नंदन के एक रूप हो जाते हैं। और फिर वो कन्या को उठाकर फिर चले जाते हैं। उस समय भोर के समय, उस समय भोर का समय होता है, प्रथम प्रहर का समय होता है। नंद बाबा की एक बहन है, नंदगांव में भी रहा करती थी, उसको भोर के समय स्वप्न आता है कि मेरी भाभी को पुत्र हुआ है। तो वहीं से वो उठ जाती है रात को, एकदम भाग के नंद भवन में आती है, दरवाजा खटखटाती है, उठो उठो भैया, उठो भाभी, उठो, देखो आ तुम्हारे घर में लाला जन्म हुआ है। सब लोग उठ जाते हैं, देखते हैं कि यशोदा की गोद में श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से उसी समय से वहां पर आनंदोत्सव शुरू होता है। श्रावण मध्य अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, तृतीय चरण, इस समय भगवान का विवाह होता है और सब जगह खबर फैल जाती है। सब जगह से ग्वाल बाल, गोपगण, गोपियां श्रृंगार करके पुष्प ग्रहण, पुष्प का अलंकार ग्रहण करते हुए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, बहुत सारे उपहार लेते हुए, हाँ अपने क्या कहते हैं उसको, सुपड़ा कहते हैं ना उसको, वो पूरा सामान भरकर भाग रहे हैं सब लोग। हाँ मक्खन के गोले, दही दूध लेकर भाग रहे हैं सब, आते आते सबको बधाई दे रहे हैं, अब एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंक रहे हैं। कहते हैं कि नंद बाबा का जो उत्सव हुआ ना, नंदोत्सव, वो 6 महीने तक चला, एक दिन 6 महीने का हुआ। और क्या क्या नहीं हुआ, सब सखियां आई। और ऐसे कहते हैं कि नंदगांव, सॉरी गोकुल के जितने रास्ते थे वो सब फूलों से भर गए, क्योंकि जब सखियां और गोपियां भाग भाग के आ रही थी और उनके शीश से सब फूल गिर रहे थे, उसी से सारे रास्ते जो है फूलों से भर गए थे। फिर मक्खन के गोले, दही दूध से भर गए थे। जब पहुंचे, सब लोगों ने बधाई दी यशोदा को, लाला के दर्शन करने के लिए विनती किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेरे लाला का दर्शन नहीं दूंगी, आपके नजर लगेगी। तो गोपियां कहते, देखो हमारे सुपड़े में क्या है, नजर लगाने का सामान नहीं, नजर उतारने का सामान लेके आए हैं हम। और भगवान की बड़ी इच्छा हुई कि मेरी सखियां जो गोपियां मुझे दर्शन करना चाहती है, तो भगवान ने अपने चरण जो है ना, उन्होंने छुपा के रखा था पूरा, भगवान को कवर करके अपने गोद में, आंचल में, तो भगवान ने पैर निकाल दिए बाहर, तो सब गोपियां उनके चरणों पर गिर गई। फिर जैसे ही चरणों का दर्शन हो, भगवान ने अपना शीश बाहर निकाला और सबको अपने मुख कमल का दर्शन दिया। इस तरह से सब लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिए। ये बहुत बड़ी विशेष बात है, हम सब लोग भगवान के पास में इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं, एप्लीकेशन, ये दो वो दो, ये दो वो दो, और कभी समाप्त तो होता नहीं है, वो बढ़ता रहता है लिस्ट हमारा। लेकिन ब्रज में जो उपासना है उसका विशेष भाग, विशेष स्वभाव यह है कि ब्रज में कोई भगवान से कुछ मांगता नहीं है, लोग जाके भगवान को देते ही हैं। तो सब लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, लजुग जुग जियो नंद के लाला, हाँ हम सबकी रक्षा करें, इस तरह से। तो उसके बाद में नंद भवन के आंगन में, आप नंद गांव गए कभी, उसमें बहुत बड़ा ऐसा विशाल आंगन है, आज तो मंदिर बनाया लेकिन वो नंद बाबा का घर था। तो उसमें बहुत सारी मोरियां थी एंड ड्रेनेज पॉइंट्स, तो इन लोगों ने इतने मक्खन के गोले फेंके, इतने मक्खन के गोले फेंके, सब जाके मोरी में अटक गए बहुत सारे। फिर दूध दही फेंका, इतना मात्रा में फेंका कि वहां पर एक क्षीर सागर पैदा हो गया, दही दूध से मिश्रित, इसमें कमर तक। और सब लोग बोले, नंद बाबा आज आपको तो नाचना पड़ेगा, आज लाला का जन्म हुआ है, नाचना होगा। एक नहीं, दो दो लाला हुए हैं, तो कहते मुझे नाचना नहीं आता है, नाचो, नाचना ही पड़ेगा। तो वो बड़े थे शरीर के, बड़े ऐसे मन बड़े पर्वत के समान थे वो, तो ये बीच में खड़े कर दिया उनको। और एक कुछ ग्वाल बाल उत्साही लोग आए, पीताम्बर ऐसा लंबा कर दिया, उनको पेट में घुमा दिया, यहाँ से एक एक एंड, यहाँ पर एक एंड, और उनको ऐसे घुमाना शुरू किया, मानो मंदराचल जो है वो क्षीर सागर में उसका मंथन हो रहा है। कहते हैं कि क्षीर सागर का जब भी हुआ था मंथन, तो उसमें पहले विष निकला था, इसमें विष तो निकला नहीं, श्री कृष्ण रूपी अमृत पहले से ही पैदा हो गया था, उसमें 14 नत्र रत्न निर्माण हुए थे। इसमें तो नंद बाबा ने कृष्ण भगवान के जन्म के ऊपर अनंत रत्नों को लुटाया। कहते हैं 7 पर्वत बनाए उन्होंने धान्य के, उसको शिखर में सब ज्वेल्स रत्न से पुखराज हीरा मोती माणिक सब लगा दिए, और वो 7 पर्वत जो रत्नों से भरे हुए थे ऊपर से शिखर पर, वो सब ब्राह्मणों को बांट दिए। कहते इतना नंद बाबा ने लुटाया वो दिन, इतना लुटाया कि सब लोग उनके दान दातृत्व से प्रभावित होकर जिनको जो भी मिला वो भी उन्होंने सबको बांट दिया। किसी ने अपने पास कुछ रखा नहीं, आपको मिला आपने किसी को दिया, उसने किसी को दिया। इस तरह से पूरे ब्रज में सब लोग दातृत्व से प्रभावित थे। उसमें उन्होंने इतने गाय बांटे, दर्शन गाय दान किए, नंबर से तो 2 लाख कहा गया लेकिन अनंत गायों का वितरण किया उन्होंने। तो वो भव्य नंद भवन का समारोह देखने के लिए सभी देवी देवता वहां पर भेष बदल कर आए, जैसे हमेशा होता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय भी हुआ था, राम भगवान के जन्म के समय भी हुआ था। सभी देवी देवताओं को वो तो रूप तो दिखता नहीं ना कभी, वो तो अपने गौलोक धाम में, अयोध्या धाम में, साकेत धाम में हमेशा किशोर अवस्था में 16 वर्ष के आयु में रहते हैं, तो उनको दर्शन नहीं होता है, तो सब बाल रूप का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं भेष बदल कर। तो शंकर जी भी आए नंदी को लेकर, और पार्वती जी आए गणेश को लेकर, लेकिन गायों का इतना वितरण हो रहा था गाय बैलों का कि शंकर जी नंदी के पूंछ को पकड़ कर खड़े थे, कहीं छोड़ दिया इसको तो इसको भी दान दे देंगे किसी को, तो ऐसे पकड़ के खड़े, भाई मेरा वाहन जो है मेरे पास रहे। पार्वती देवी जो है ना वो अपने गणेश जी को गोद में लेकर बैठी थी, क्योंकि क्योंकि नंद बाबा ने इतने हाथी घोड़े बांटे उस दिन, इतने घोड़े हाथी बांटे कि भाई ये भी हाथी बट जाएगा तो उसको गोद में रखा आपने। इस तरह से सभी लोगों ने बड़ा आनंद लिया। 6 महीने तक उत्सव 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 चलते ही रहा। सब लोगों ने इतना आनंद लिया, इतने नाचे कूदे खाए पिए, और किसी को पता नहीं चला कि 6 महीने हुए, उनको लगा कि एक ही दिन चल रहा है, इतने भाव विभोर थे सब लोग। और 6 महीने के बाद, मतलब उस एक दिन के बाद जब सूर्यास्त होने लगा, तो सब लोगों ने मिलकर ब्रह्मा जी को खूब गाली दी, बोले ब्रह्मा जी बूढ़ा हो गया, अभी ब्रह्मा जी की बुढ़ापे में थोड़ी बुद्धि भी थोड़ी कमजोर हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन का सूर्य इतना जल्दी अस्त क्यों कर रहा है, कम से कम आज तो ये सूर्यास्त देर से कर लिया होता तो कितना अच्छा था। फिर भी चलो भाई, सूर्यास्त हो गया तो चलना चाहिए। इसमें बीच में क्या हो गया, षष्ठी पूजन भगवान का मिस हो गया। आप जानते हैं ना षष्ठी पूजन करते हैं षष्ठी देवी के साथ। जब भगवान का फर्स्ट बर्थडे आया तभी यशोदा मैया को याद आया कि षष्ठी पूजन तो किया ही नहीं इनका, तो फर्स्ट बर्थडे कैसे मनाएंगे, तो जल्दी जल्दी में भाग भाग कर भगवान के अगले अष्टमी के दिन वर्षगांठ मनाने के पहले षष्ठी को भगवान का षष्ठी पूजन किया गया। उस स्थान का नाम पड़ा छठीकरा, जो आज छठीकरा नाम से प्रसिद्ध है, हमारे वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से ये नंदोत्सव बहुत आनंद से संपन्न हुआ। उसके बाद में नंद बाबा को याद आई कि अरे वार्षिक कर चुकाना है, कंस के पास जाना है। वो कंस बड़ा राजा था, नंद बाबा कर चुकाते थे, तो कर चुकाने जाने के लिए उन्होंने अपने सभी बड़े गोपों को बता दिया अपनी जिम्मेदारी कि मैं जा रहा हूँ, आप अपने नंदगांव को संभाल लेना, तो नन्हे नन्हे बालक है उनको भी संभालना, और वो मथुरा चले गए। मथुरा में कंस को कर चुकाया, फिर वो भाग भाग के वसुदेव के पास गए, क्योंकि पता था कि वसुदेव जी बड़े कष्ट पा चुके थे, 6 पुत्रों का उनके सामने नाश हुआ था, एक पुत्र जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ उनके दृष्टि से गर्भपात हुआ, 8वें पुत्र भी उनको पता नहीं था, लेकिन पता था कि समस्याएं बहुत थी, और अभी वो बाहर थे, उनको कंस ने थोड़ा सा मुक्त कर दिया था पश्चाताप करते हुए, कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं समय के लिए। तो वसुदेव जी बड़े प्रेम से बात करते, लेकिन संभाल के बात करते कि उनको बताया नहीं जाए कि ये मेरे ही पुत्र हैं। कहते हैं कि संभाल कर रखना, ये कंस बड़ा आतंकी है, कभी भी हमला कर सकता है, वैसे आपके बालक मेरे बालक जैसे ही हैं लेकिन आपकी उनकी रक्षा करना, सावधान रहना हमेशा। नंद बाबा के घर में इतना आनंद है, आनंद से वहां गए थे, लेकिन कंस सुदेव उनके बड़े परम मित्र थे, और उनका दुख देखकर उन्होंने सांत्वना दिया उनको। आचार्य लिखते हैं कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, अगर हम खुश हैं हमारा दोस्त दुखी है तो हमको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए, और अगर हम दुखी हैं और हमारे दोस्त के घर में कुछ शुभ शुभ घटना हो रही है तो हमें दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। तो वसुदेव ने आनंदी होने का प्रयास किया और नंद बाबा ने उनको सांत्वना देने का प्रयास किया, ओके तुम जल्दी चले जाओ, ज़्यादा देर दूर मत रहो अपने घर से। इस बीच में क्या हुआ, जब ये सब हो रहा था तो कंस ने शोक सभा लगाई, क्योंकि पता है ना कि वो आठवीं कन्या को लेके आए तो आकाश में चली गई, उन्हें बताया तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, तुम भ्रम में मत रहो और वो देवकी वसुदेव पर अत्याचार बंद करो। तो आठ भुजा वाली देवा देवी प्रकट हो गए तो एकदम हताश हो गया वो, बड़ा सिद्धांत रूपी बात किया उसने अपनी बहन के साथ कि देखो मैं तो कठपुतली हूँ, ये सब जो भगवान की विधाता की इच्छा से होता है, मैं तो एक कठपुतली उनके हाथ में हूँ, मैंने जो भी कुछ किया मैंने नहीं किया, विधाता की इच्छा से हुआ है, ऐसे बड़ा फिलोसॉफी झाड़ देता है उसके ऊपर। और देवकी कैसी है देखो, उसके छह पुत्रों को आंखों के सामने कुचल कर नष्ट कर दिया, उसको भी तुरंत माफ कर देती हो। और दूसरे दिन बड़े पश्चाताप से वो शोक सभा बुलाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन सब राक्षस बोलते हैं अरे चिंता मत करो, हम किस लिए हैं, तुम्हारी तलवार की धार सब देवता कांपते हैं, वो शिवजी अपने भजन में बिजी हैं, ब्रह्मा जी ध्यान में बिजी हैं, और विष्णु अपने भक्तों के हृदय में छुपे हुए हैं, वो डरने की जरूरत क्या है। उतने में वहां से पुतना आती है, वो कहते हैं मेरे होते हुए आपको चिंता की जरूरत क्या है, मैं अब भी जाकर एक से एक दिन से लेकर 6 महीने तक तो जितने बालक हैं उन सबका नाश कर देती हूँ, जितने भी एरिया आपके पास में है सब गोकुल में ब्रज में जितने भी बच्चे हैं सबको समाप्त कर देती हूँ। तो कंस को पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वहां से पुतना जो है ना निकलती है। पुतना खेसरी के रूप में उसका वर्णन किया गया है, खेसरी का मतलब होता है कि जो तिनके को अभिमंत्रित करके विमान बनाकर उस पर बैठकर उड़ सकती है। ब्लेड ऑफ ग्रास कैन बिकम एरोप्लेन, और जहां चाहे वहां उतरेगी। और उसका भोजन था नन्हे नन्हे नवजात शिशुओं का खून, ऐसी भयंकर थी वो। तो वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आती है और जा रही है गोकुल की ओर, और नंद सुखदेव जी जो है वो उसका वर्णन कर रहे हैं उसके सौंदर्य का और उसके वस्त्रों का अलंकारों का। आपको प्रश्न पड़ेगा मन में कि सुखदेव जी उसका वर्णन क्यों कर रहे हैं, गोपियों का करते हैं और यशोदा का करते हैं और देवकी का करते हैं। लेकिन वो आचार्य उसके लिए बताते हैं कि जो व्यक्ति पापी भी हो लेकिन वो कृष्ण की ओर जा रहा है तो गौरव करने के योग्य है, इसलिए सुखदेव जी खुले दिल से उसका गौरव कर रहे हैं, मतलब सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि उसने अलंकार पहने हुए हैं, कुंडल घूम रहे हैं उसके, वो यहाँ वहाँ देख रही है, बालों को संवार कर रखा हुआ है, अलंकार पहने हैं, मालाएं पहनी हैं और हाथ में कमल लेकर ऐसे जा रही है। तो उसका वर्णन देखकर हमको समझ में आता है कि ये कोई कुलीन स्त्री नहीं है, वो मार्ग पर नाचते हुए यहाँ वहां देखते हुए चंचल मन से चंचल कृतियों से आ रही है। तो सीधे नंद भवन में जाती है तो सब लोगों को लगता है अरे ये तो लक्ष्मी है शायद, इतना सौंदर्य, इतनी शालीनता, इतना सौंदर्य है उसके पास, शायद वैकुंठ से लक्ष्मी हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। सीधे यशोदा के पास पहुंचती है और लाला को मांगते हैं, तुरंत उसको दे देती, तुरंत उसको लेकर वो जाती है पीछे। आते हुए उसने करोड़ों बालकों का नाश कर दिया है, स्तनपान करा के अपने स्तन में कालकूट विष धारण करके वो आई है, और जितने लोगों को पिलाया बच्चों को सब नष्ट हो गए हैं। वहां पर बाद में पहुंचती है नंद भवन में, पीछे लेके जाती है और स्तनपान कराती है। कृष्ण भगवान अभी कितना जन्म हो, कितना दिन हुए, छोटे से बालक आंख बंद कर लेते हैं। तो आचार्य लोग बताते हैं कि इनका क्या भाव था, एक भाव तो ये कि प्रथम मैं तो माखन खाने के लिए, दूध दही मिश्री खाने के लिए आया हूँ और मौसी जी आ गए विष पिलाने के लिए, इसलिए आंख बंद कर लिया। दूसरा भाव ये है कि अरे तो विष पीने का जो एक्सपर्टाइज है ना, कुशलता जो है वो तो शंकर जी के पास है, तो शंकर जी का ध्यान करे, तुम आके विष पी लो बाद में दूध मैं पी लूंगा। और ये भाव था उनका मन में कि अरे राक्षसों का वध तो करना है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतान, लेकिन पहला वध करना है वो स्त्री राक्षसी का, तो आंख बंद कर लिया उन्होंने। तो फिर स्तन पे लग गए तो सब विष पी लिया, फिर दूध भी पी लिया, फिर प्राणों को भी चूसने लगे, वो इतने जोर से चिल्लाई, छोड़ 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 मुझे छोड़ बालक, छोड़ मुझे छोड़। और ऐसे बालक को स्तन पे धारण करते हुए भागने लगी यहां वहां। कुछ देर के बाद इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि अपना जो रूप बदला था ना वो मेंटेन नहीं कर पाई। वो एकदम कज्जल पर्वत की तरह, काजल के पर्वत की तरह 6 मील की लंबी विशाल शरीर धारण किया उसने, जो उसका मूल शरीर था। उसको समझ में नहीं आया कि कभी उसका भेष, उसका जो जो नाटक रूपी भेष था, उसका छद्म रूप था, वो नष्ट हो गया। और भागते 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 वो कहां गई, कंस के 6 कोस मील उपवन में गई, जहां पर कंस विहार किया करता था। वो एक प्रकार का कंस का टोना था, टोना यानी तंत्र था कंस का, एक प्रकार का, शी वॉज लाइक अ मिस्टिक। जब होता ना तंत्र का परिणाम, जब भी इष्ट पर जिस पर किया गया है वो उस पर नहीं होता है, तो जिसने किया हुआ है उस पर जाके उसका परिणाम होता है, वो उल्टा हो जाता है ना। तो जाकर कंस के 6 कोस का उपवन में गिर जाती है और वो सब नष्ट हो जाता है, विध्वंस हो जाता है उसका। और वो इतने जोर से गिर जाती है, पहले से ही वो उसके प्राण भगवान चूस लेते हैं, वो मर जाती है और गिर जाती है वहां पर, सारे बाल उसके बिखर जाते हैं। तो ऐसे पर्वत रूपी समान शरीर लग रहा था उसका, और उसके स्तन जो है वो कज्जल रूपी पर्वत के शिखर के समान लग रहे थे, और उसके ऊपर स्तनाग्र के ऊपर, हाँ पयोनिधि के ऊपर भगवान दूध पीने के बहाने लगे हुए, वो तो नीलमणि की तरह प्रकाशमान दिखाई पड़ रहे थे। तभी सब लोग देख रहे, अरे उधर कृष्ण उधर उधर है कृष्ण, कैसे जाए उसके ऊपर। तो उसके बिखरे हुए बालों को गांठे लगाए उन्होंने, सीढ़ी बना दी उसके ऊपर, है ना, वो ऐसे गांठ लगा लगा कर पैर रखने के लिए ऐसे सीढ़ी बनाकर चढ़े। इतनी विशाल थी वो, कहते 100-200 लोग तो उसके चेहरे पर ही घूम रहे थे। सब लोग ऐसे गए सीढ़ी में चढ़ते हुए, भगवान को कैसे उतारा और सीधे उसमें नंद बाबा भाग के आए, यशोदा माई भाग के आई, सब लोग मिलकर यशोदा माई को बहुत बुरा भला कहने लगे। अरे तू बूढ़ी मैया, बूढ़े होकर पहली बार माता बने, उसको पता नहीं किसके हाथ में देना है किसके हाथ में देना नहीं है, तुमको समझ में नहीं आता किसके हाथ में देना है, तुमने राक्षस के हाथ में बालक को दे दिया। अभी उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे, अरे लक्ष्मी आ गई लक्ष्मी आ गई, उसमें से ही कुछ लोग थे, रूपांतर हो गया तो उसको जाके कोस रही है। यशोदा देवी को इतना दुख हुआ कि मैं ऐसी कैसी बावरी हो गई, किसी के भी हाथ में दे दिया बिना परिचय के। वो सब पूर्णमासी वहां से आ गई, तुरंत बालक को लेकर गौशाला लेके गए और गाय की पूछ को लेकर शरीर को स्पर्श करने लगे श्री अंगों को, और भगवान का नाम उच्चारण करने लगे, विविध नामों का उच्चारण करने लगे, ब्राह्मण आके श्लोकों का, वेदों का, ऋचाओं का गान करने लगे। तो भगवान ऐसे स्मित हास्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके ही नामों का गुणगान संकीर्तन किया जा रहा है। बोले अरे मुझे भी जब संकट आता है तो मेरे ही नाम का गुणगान होता है, ये सोच देख कर वो मुस्कुरा रहे हैं। संकीर्तन की महिमा प्रकट होती है यहाँ पर, कि ठाकुर को भी जब भी कष्ट होता है तो उसको भी मिटाने के लिए उनके ही नामों का गुणगान किया जाता है। तो नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, नाम रूप लीला धाम भगवान से भी श्रेष्ठ है, भगवान से अधिक श्रेष्ठ भी है और अधिक कृपालु भी है। तो वो छोड़ छोड़ करके पुकार रही है भगवान, कहते हैं एक तो किसी को किसी से आसानी से वो पकड़े नहीं जाते हैं, किसी को वो आसानी से पकड़ते नहीं है, लेकिन जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। उनकी बारा एक बार किसी को पकड़ लिया उन्होंने तो उसको छोड़ते नहीं है। अभी एक और बात ब्रजवासी बताते हैं कि भगवान जो है ना वो ग्वारिया भगवान है तो भगवान सर्व ज्ञानमय, लेकिन ब्रज में जब आते हैं ना तो वो एकदम ग्वारिया बनकर गंवार बनकर आते हैं, तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो, ब्रज में तो कोई गुरुकुल नहीं था, बाद में गए ना गुरुकुल में, तो उनको ना छोटा मोटा कर्म का हिसाब वो रखना नहीं जानते, मोटा मोटा हिसाब जानते हैं कि आप पूरी शरणागति कर लो मैं पूरा आपको अपने आप को दे दूंगा, ये वो जानते हैं। कर्मकांड का हिसाब वो ब्रज में रखते नहीं, एक ही हिसाब है शरणागति और अपने को पूर्ण अर्पण करना। तो उसमें पुतना के विषय में ऐसा कहा गया है कि पुतना दुर्गुणों का आगार थी, इतना बुरा उद्देश्यों को लेकर आई थी वो, लेकिन भगवान ने सारे दुर्गुणों पर उसका दुर्लक्ष किया और क्या याद रखा कि मेरी माँ बनकर आई थी दूध पिलाने के लिए, दूध पिया भी उसका उसने उन्होंने, और सभी दुर्गुण जो है वो दूध पिला पीते समय जो कष्ट उसको हुआ, जो पीड़ा उसको प्राप्त हुई, यातना प्राप्त हुई, उसमें सब उसके दुर्गुण नष्ट हो गए और दूध पीते पीते वो शुद्ध भक्त बन गई। जब मर गई तो शुद्ध भक्त बन चुकी थी और भगवान ने उसको गौलोक धाम में धात्री का स्थान दे दिया, यशोदा माई के असिस्टेंट का डायरेक्ट स्थान दिया। ये भगवान को जब स्पर्श होता है हमारे जिंदगी में, इसका परिणाम है। जब भगवान को हम स्वीकार करते हैं, उनका संपर्क करते हैं, उनसे संबंध जोड़ देते हैं, तो ये उसकी महिमा है, भगवान के संपर्क और संबंध की महिमा। किसी भी प्रकार से भगवान का संपर्क होता है तो ऐसा दिव्य परिवर्तन हमारे हृदय जीवन में आते हैं और दिव्य गति भी प्राप्त होती है। एक कुत्ते का पिल्ला, पिल्ले को चैतन्य निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु, जो बालक का नाम निमाई था, गले लगाया, चुम्मा दिया, प्रेम किया, तो वो कुत्ता जो है पिल्ला कुछ ही समय में चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ चला गया, कुछ ही क्षण में। हाथी, घोड़ा, हिरण, शेर, खरगोश, ऐसे जंगली जानवर जितने भी थे वो सब दो हाथ ऊपर करके हरिनाम संकीर्तन करने लगे और उनके चरणों के चिन्ह पृथ्वी पर निर्माण हुए, पृथ्वी पर गल गई भाव से। ये भगवान के संपर्क का परिणाम है। इसलिए हमें भगवान का संपर्क करने के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान का संपर्क करने से लाभ ही लाभ होता है, कभी भी नुकसान नहीं होता है। ऊपर से पुतना का इतिहास ऐसा है कि वो पुराने जमाने में सुपर्णखा थी, नहीं सुपर्णखा नहीं थी, पुराने जमाने में वो वामन देव का जब अवतार हुआ था तो वो बलि महाराज की बहन थी, और बलि महाराज के सामने जब वामन देव सुंदर बालक बनकर प्रकट हुए तो उसको इतना वात्सल्य निर्माण हुआ बलि की बहन के मन में, उसका नाम रत्नमाला था, उसके मन में इतना वात्सल्य पैदा हुआ, उसका लगा कि मैं इस बालक को अगर माँ बनकर स्तनपान कराऊं तो कितना अच्छा होगा, और वो सोचती रही ऐसे। और उसके बाद में वो जब बड़े हो गए, त्रिविक्रम बन गए और सब पृथ्वी और स्वर्गलोक को नाप लिया, उसके सर पर पांव रखा, उसको नरक में भेजा, इतना क्रोध आया उसको कि मैं उसका, काश उसका मैं वध कर सकूं, ऐसा भाव आया उनमें। तो दोनों भाव लेकर वो पुतना बनकर आई, दूध भी पिलाया, वध करने का प्रयास भी किया, माँ बनने का प्रयास भी किया और वध भी करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने वध करने का प्रयास किया ये मन में नहीं रखा, माँ बन के आने का प्रयास किया ये मन में रखकर उसको धात्री का रूप दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ, इतने में वसुदेव जी के मिलकर नंद महाराज लौट के आते हैं और देखे कि इतने बड़े छेक उसकी पूतना गिरी हुई है, सब लोग हाहाकार मच गया है, परेशान हो गए सब लोग। तो फिर ये गौशाला में लेके जाते हैं, उनका सब विधि विधि करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद में कहते हैं यार इतनी बड़ी पूतना का शरीर यहाँ रखेंगे तो सड़ जाएगा, सबके आरोग्य के लिए अच्छा नहीं होगा, उसका दाह संस्कार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा दाह कैसा कैसे बनाएंगे। तो सब लोग कुल्हाड़ी फावड़ी फरसी लेकर घर पे आते हैं, 108 टुकड़े करते हैं उसके, 108 चिताएं रचाते हैं उसके लिए, और एक एक ग्वाल बाल बालक जो है एक एक चिता को मुखाग्नि देता है। तो आचार्य बताते हैं कि देखो कैसे भगवान के संपर्क का भाग्य, उसका एक नाम का अर्थ है पुतना, उसको कोई पुत्र नहीं था, कौन संसार करेगा, संस्कार करेगा उसका, लेकिन भगवान का संपर्क होने के बाद उसकी इतना भाग्य का उदय हुआ उसका। अरे एक एक नहीं 108 बालकों ने उसको संस्कार किया, और जब शरीर उसका जला तो मांस की बदबू तो राक्षस का शरीर की कितनी खराब आनी चाहिए, लेकिन चंदन अगुरु और सुंदर सुंदर द्रव्यों की खुशबू सारे ब्रज में फैल गई, केवल भगवान के होठों का स्पर्श हुआ उसको, और किसका स्पर्श नहीं हुआ, भगवान के होठों का स्पर्श हुआ तो इतना परिवर्तन हुआ कि उसके शरीर से सुगंध आने लगी सब जगह पर, जला मुर्दे शरीर को जलाने के बाद की बात है ये। ऐसा भगवान के संपर्क का महिमा है। और आप जानते हैं भीष्मदेव भी ब्रह्मचारी थे, जब उनका शरीर समाप्त हुआ तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जिसकी भी मृत्यु होगी वो सब लोग पहले अंगुली से आपको तर्पण देंगे, भीष्म तर्पणाय नमः, तर्पणाय स्वाहा ऐसे कुछ बोलते हैं, और अंगुली से उनको तर्पण देते हैं। तो सबसे पहले किसका भी श्राद्ध करने के पहले आपको तर्पण देंगे, फिर जिसका श्राद्ध करना है श्राद्ध करेंगे, क्योंकि भीष्मदेव भगवान को समर्पित थे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि जो पुतना उद्धार की लीला सुनते हैं, गोविंदे लबते रतिम, जो पुतना की उद्धार की कथा हृदय पूर्वक एकाग्रता पूर्वक प्रेम से सुनते हैं उनको गोविंद के चरणों के प्रति प्रति प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद में राधा रानी का जन्म होता है, और वो भी उधर ही यमुना किनारे हैं, ऋषभानु महाराज वहाँ अपने सरोवर में स्नान करने जाते हैं, उनको भोर के समय पर बड़ा प्रकाश दिखाई पड़ता है, और गौर से देखते हैं तो वो प्रकाश एक कमल से आ रहा है जो अनेक हजारों पंखुड़ियों वाला है, और गौर से देखते हैं तो देखते हैं उसके अंदर कमल से भी नहीं, कमल के अंदर एक सुंदर बालिका है, स्वर्ण बालिका, उसके शरीर से वो प्रकाश आ रहा है, बड़े प्रभावित होते हैं और विस्मय जनित भाव में विचार कर रहे होते हैं, ब्रह्मा जी ध्वनि रूप में क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, मतलब दर्शन देते नहीं, आवाज रूप से आकाशवाणी के रूप में आते हैं, कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में सुचंद्र और कलावती बनकर 12,000 थाल तप किया था पेड़ से गिरे हुए पत्ते खाकर, उसके फल स्वरूप भगवान की अंतरंगा शक्ति आपकी कन्या बनकर आएगी, ऐसा वरदान आपको ब्रह्मा मैंने दिया था, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो यही ये कन्या है, इसको स्वीकार करो, अपनी कन्या के रूप में वो घर ले जाओ। घर ले जाते हैं, उत्सव मनाना चाहते हैं, अभी इधर तो 6 महीने का उत्सव हुआ ना, अपना भी होना चाहिए, लेकिन वो उत्सव होने को थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, क्योंकि वो बालिका ना आँख खोल रही है, ना कुछ सुन रही है, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ रो रही है, कैसे उत्सव मनाएं, इसको शुभ माने कि अशुभ माने, तो उतने में नारद मुनि आते हैं, गणित करते हुए चार्ट बना के आते हैं, कहते हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति आई है, मुझे दर्शन करना है उनका, सीधे उधर पहुंचते हैं पुष्पानु महाराज के महल में, पूछते कई कन्या हुई है क्या आपके पास, तो वो संकोच से ना कर देते हैं, बोले कैसे कहेंगे कि हमको अंधी कन्या हुई है, ना कहते हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं मेरा गणित तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन कैसे गलत हो गया, सोचकर जाने लगते हैं। उसने में सखियां जो हैं कीर्ति मैया की, वो कहती अरे तो साधु मुनि बहुत प्रभावी होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनके आशीर्वाद से क्या नहीं होता है, अब इनको झूठ मत बताओ, बता दो सच, हो सकता है इनकी कृपा से उनको दृष्टि वाचा श्रवण सब प्राप्त हो जाए। तो तुरंत भाग भाग के सखियों को भेजते महाराज जी आई आई हमारे घर में कन्या हुई है, क्योंकि वो कन्या नहीं कोई पुत्र तो कोई संतान तो हुई है, ऐसे बोलकर सुदामा को आगे करते ये एक पुत्र हमारा है, तो फिर भी वो जरा भ्रमित हो जाते हैं, फिर उनको बुला लेते हैं कि है कन्या हमारे घर में जन्म हुआ है। तो नारद मुनि साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको अंतपुर में लेके जाते हैं, दर्शन कराते हैं, तो नारद मुनि तुरंत कहते हैं कि उत्सव मना दो, कोई संकोच मत करो, लेकिन उत्सव में कृष्ण बलराम यशोदा नंद महाराज को बुलाना मत भूलना, और सबको तुरंत भेज देते हैं, लिस्ट बनाकर पूरा प्रोग्राम बनाकर भेज देते हैं, उनको अकेले में दर्शन करना था उनका। तो नारद मुनि जी दर्शन देते हैं, दोबारा करते तो राधा रानी 16 साल की अवस्था का दर्शन देती है, किशोरी अवस्था। नारद मुनि दोबारा बार बार बेहोश हो जाते हैं, बार बार दंडवत करते हैं, फिर वो उत्सव होता है राधा रानी के जन्म का। उस समय वृषभानु भवन में यशोदा रानी और नंद महाराज आते हैं और अपने नन्हे नन्हे कृष्ण बलराम को लेकर आते हैं, और ये वृषभानु महाराज नंद महाराज इतने अच्छे मित्र थे, कीर्ति मैया यशोदा माई इतनी अच्छी दोस्त थी, दूसरे की बातों में लग जाते हैं, इतना आनंद मिलता है उनको। उतने में कृष्ण बलराम रेंगते हुए कृष्ण भगवान आगे आगे जाते हैं, अंतपुर में चले जाते हैं, यहाँ राधा रानी का पलना है जहां पर वो पड़ी हुई है। एक जगह लिखा है कि जैसे उन्होंने उनको ऐसे ऐसे बालक कैसे चलने को आता है, उसे पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं ना, ऐसे 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 पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो वो खड़े होकर जब उन्होंने स्पर्श किया तो कृष्ण राधा रानी ने तुरंत आंखें खोली और किल्लोड़ किया। दूसरी जगह लिखा है कि जैसे ही भगवान ने उनके कक्ष में प्रवेश किया, उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती हमेशा, उसके सुगंध को पहचानते ही जब घ्राणेन्द्रिया से सुगंध की पहचान हुई, वही उसी समय उन्होंने आंखें खोली। इस तरह से कृष्ण भगवान ने बाल समय में ही राधा रानी को प्रेरणा दिया, कारण था इसका राधा रानी ने कहा था कि मैं आऊंगी, जब भगवान ने वहां पर गौलोक में ऐलान किया था कि मैं आऊंगा दर्शन मैं अवतार लूंगा, तो राधा रानी बेहोश हो गई थी वहां पर। बोले क्यों बेहोश हो गए आप, कहते आप मुझे छोड़कर जाओगे, नहीं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा, लेकिन मैं तो नहीं आऊंगी, क्योंकि जहां पर वृंदावन जमुना गोवर्धन नहीं है वहां पर नहीं जा सकती मैं। वो कहते आपका मंतव्य जानकर पहले ही मैंने गोलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा और पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना नीचे भेज दिया मैंने पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी मेरा एक शर्त है कि मैं आपका दर्शन किए बिना किसी का दर्शन नहीं करूंगी, आपके ध्वनि के बिना किसी के ध्वनि नहीं सुनूंगी, और आपके बिना किसी का नाम उच्चारण नहीं करूंगी। इसलिए वो बंद करके बैठी हुई थी, जब श्री कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और किल्लोड़ किया। इसके बाद में वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे गर्ग मुनि, और उनको जिम्मेदारी थी कि मेरे पुत्र तो मेरे पास नहीं, नंद महाराज के पास में तो संस्कार तो होना चाहिए, नामकरण आदि, तो वो गर्ग मुनि को भेज देते यथोचित चेतावनियों के साथ, हाँ सम क्वेश्चन दे के भेजते। तो वो गर्ग मुनि जी आते हैं नंद भवन में और मिलते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तो वसुदेव का कुल पुरोहित हूँ, अगर मैंने किसी का नामकरण किया, एक कंस को मालूम पड़ेगा तो पता चलेगा कि इसके इनके पुत्र जो है वो नंद भवन में है, तो दोबारा कहते हैं सही बात है आपकी, हम रिस्क नहीं लेंगे, केवल मैं, रोहिणी, यशोदा और दो पुत्र, इसके अलावा गौशाला में हम जाएंगे, और गौशाला में इसके अतिरिक्त और कोई नहीं होगा, केवल आप होंगे बस। और यही लोग केवल चले जाते हैं। कभी मौका मिलेगा आपको कहानी बताएंगे इसका, बाद में परिणाम क्या हुआ, एक उसका प्रसंग आता है। कभी कभी होता है ना, देखो अभी आपके घर में कोई प्रसंग होता है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि आप किसी को भी बोल नहीं पाते कभी कभी, और बाद में जब किसी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ, वो सब आके झगड़ा करते हैं आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया, हमने, हमको नहीं बताया, तो ऐसा भी हुआ है, वो आगे बड़ा प्रसंग हो गया उसका, बड़ा प्रसंग हो गया है। एनीवेज, तो वसुदेव जी को लेकर, अब वसुदेव जी के पुरोहित को, गर्ग मुनि को लेकर वो गौशाला में जाते हैं, तो यशोदा और रोहिणी देवी माता जो है ना संवाद करते हैं, कहते हैं वो वसुदेव जी के बड़े कुल पुरोहित हैं, सुना है बहुत बड़े ज्ञानी है वो, और हमें उनका ज्ञान का परीक्षा भी लेना चाहिए, क्योंकि हम तो उनको जानते नहीं, हमने तो पहली बार दर्शन किया उनका। हम क्या करते हैं, अपने बालकों को एक्सचेंज करते हैं, मैं बलराम को, मतलब तुम्हारे पुत्र को मेरे गोद में रखती हूँ, तुम मेरे पुत्र को अपने गोद में रखना, और हम उनके सामने बैठेंगे, फिर लोग के बैठ जाते हैं। तो यशोदा देवी कहती हैं बताओ मेरे पुत्र का भाग्य क्या है, बताओ। तो वो आंख बंद करते हैं और कहते हैं आपकी गोद में जो पुत्र है वो तो रोहिणी का पुत्र है। क्या संस्कृत बोलते पता नहीं, लेकिन संस्कृत में बताते उनको कि आपके गोद में जो पुत्र है वो रोहिणी का पुत्र है, वो तो भगवान के प्रथम लीला अवतार हैं, उनका नाम राम होगा, क्योंकि सबको आनंद देंगे वो, लेकिन इनका बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो बलराम के रूप में जाने जाएंगे। फिर कहते हैं रोहिणी तुम्हारे गोद में जो पुत्र है वो तो यशोदा का पुत्र है, और इनके नाम के बारे में क्या बताए, इनकी महिमा क्या बताए, तो अगाध है, अगाध, वो तो जब चिंतन कर रहे थे ना आंख बंद करके, उनको सारे अवतार उनके आंखों के सामने आ गए, सारे अवतार, जितने भी अवतार लिए, ऐसे ऐसा नहीं कि दशा अवतार लिए केवल, हर युग में अवतार लेते हैं वो, जिनका दशा अवतार में भी लिंक लिस्ट नहीं है उसका, जम्बवामी युगे युगे, सब अवतारों का भीड़ हो गई मन में उनके, और वो बोल रहे इनके बारे में क्या कहें क्या कहें क्या कहें। तो उनका नाम कृष्ण होगा, क्योंकि सर्व आकर्षित आकर्षिति इति कृष्णः, कर्षति इति कृष्णः, सबका मन मोह लेंगे ये, इसलिए कनगामे कृष्ण होगा, और ये गिरिराज को धारण कर लेंगे यथावकाश, इसलिए उनका नाम गिरिधारी भी होगा, और किसी जन्म में ये वसुदेव के पुत्र भी रह चुके, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। वो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि ये वसुदेव के पुत्र है, इनका नाम वासुदेव है, मतलब किसी जन्म में ये वासुदेव के पुत्र भी रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव होगा। देखिए दिस इज कॉल्ड लव एंड कंसर्न। अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सावधानी से कर रहे हैं कि अपने किसी शब्द से कहीं धोखा, या कहीं क्या कहते हैं उसको, डेंजर, हाँ, चित का क्या कहते हैं, हाँ, रिस्क उत्पन्न ना हो कहीं अनजाने में। फिर उसमें एक एक नाम बताते हैं उनका, फिसल चंद्र, क्या कहा हमने, फिसल चंद्र, तो वो क्या नाम है, तो इसके कहानी बताते हैं ब्रजवासी लोग कि एक किसान था, वो खेत में अपना काम कर रहा था, तुम्हें साधु पहुंचता है भवती भिक्षां देहि, तो वो कहते हैं कि महाराज जी बैठिए भोजन कीजिए, और भोजन बैठने वाले थे वो पूछते हैं कि आप भगवान का नाम लेते क्या, वैष्णव धर्म का पालन करते, नहीं मैं तो समय नहीं मिलता, मैं कहाँ पर, नहीं, फिर मैं आपके घर में भोजन नहीं कर सकता, नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते, आप पाइए भोजन अभी, आपको नाम दीजिए मुझे अभी, मैं जप करता हूँ। तो कहते हैं कृष्णचंद्र शुरू करो, तो तुरंत शुरू करता है, वो शुरू करता है, साधु जी भोजन करते हैं, तो उसके बाद में दिन रात कृष्णचंद्र जप शुरू है उसका। फिर दूसरे दिन पत्नी भोजन लेके आती है, तो ये कहता है कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र, इशारे में बताते हैं कि मैं अब जप कर रहा हूँ, भोजन नहीं करूंगा। वो कहते हैं भोजन तो कर लो, तो मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो कहते हैं तुम्हारा नाम मैं कर कुछ समय कर लेती हूँ, होता ना कभी कभी ट्रांसफर करके बीच में कुछ व्यवधान लेके मौन भी तोड़ते हैं बहुत लोग, तो वो भोजन करते हैं, वो बोलने लगती है, उनको डर क्या रहता है कि मैं अगर बंद कर दिया तो मैं भूल जाऊंगा, तो फिर भाग में कैसा नाम लूंगा। तो वो भी बेचारी गंवार सीधी साधी औरत थी, वो भी अपना बोर बोर से बोल रही है, भोजन करते हैं, बोलते हैं अभी बताओ, तो वो डर के मारे ना भूल जाती है, अभी क्या बताऊं, बोलते फिसल चंद्र। तो ये अपना फिसल चंद्र जब करना शुरू कर देते हैं, फिसल चंद्र फिसल चंद्र। तो उधर गौलोक में राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं देखो मेरा कितना बढ़िया नाम उच्चारण कर रहा है, मैं अभी दर्शन देने जा रहा हूँ, बोले वो तो पागल आदमी है, वो तो कुछ भी बक रहा है। नहीं, वो मेरा नाम पुकार रहा है। तो राधा रानी कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। तो कृष्ण कहते जाओ परीक्षा करो उसकी। तो राधा रानी साधारण युवती का रूप धारण करके आती है, बोलती तुम क्या बोल रहे हो, मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, फिसल चंद्र फिसल चंद्र। तो वो पहले तो कोई जवाब देता नहीं है, बोलते ही रहता है फिसल चंद्र फिसल चंद्र। तो कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम। तो वो गुस्सा करके बोलता है तुम्हारे पति का नाम ले रहा हूँ। हाँ बोलते ना ब्रज में क्या बोलते हैं, तुम्हारे खसब का नाम ले रहा हूँ, ऐसे ही बोल लेता है वो। फिर नाराज हो जाती है, वापस गोलोक लौट जाती है। तो वो तो ऐसे बोल रहा था, तो सही तो बोल रहा है, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये नाम कैसे पैदा हुआ। तो कहते ऐसा था कि जब मैं छोटा सा था, वृंदावन में मेरा जन्म हुआ, नंदगांव में था, तो मैया मेरा बड़ा श्रृंगार करती थी। और छोटा सा था मैं, श्रृंगार करते ही फिसलता था, खड़ा होने को इतना बल नहीं था, तो मैं फिसल के गिरता था। तो मैया कही तुम्हारा नाम गर्ग मुनि ने कृष्ण चंद्र क्यों रखा, फिसल चंद्र रखना चाहिए। तब से मेरा नाम मैया ने रख दिया फिसल चंद्र, प्रेम का नाम है भगवान का। ऐसा ब्रज का प्रेम है। तो गर्ग मुनि कहते हैं, अच्छा फिर यशोदा माई और रोहिणी माता जी कहते हैं कि इतने दूर से इतने बड़े विद्वान आए हैं, केवल नाम रख के चले जाएंगे, कुछ बताना भी चाहिए उनको, क्या भविष्य वो क्या है सब। तो कहते हैं अभी देखो मैया पहला प्रश्न क्या करती है गर्ग मुनि से, इसका विवाह होगा ना। अभी तो गोद में भी पलने में पड़े हुए हैं, लेकिन मैया को हमेशा विवाह की चिंता होती है। तो क्या कहते हैं वो, बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनोजना। अरे इसके एक नहीं, अनेकों पत्नियां होंगी, अनेक विवाह करेंगे। हाँ हमारे तो लिस्ट में लिखा है 16,108, लेकिन गुप्त रूप में भी और कई हजारों विवाह करेंगे। अभी तो समय नहीं, बताऊंगा आपको मैं, 16,108 के अलावा भी उन्होंने 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह किया है, सेपरेट पैरेलल टू द गोलोक आई मीन वृंदावन पास्ट टाइम्स। एनीवेज, तो ये नारायण के समान गुणवान होगा, ऐसा बहुत गुण वर्णन करते हैं। तो फिर ये समाप्त होता है नामकरण विधि, फिर भगवान का रोज श्रृंगार शुरू होता है। फिर भगवान घुटने के बल आंगन चले जाते हैं श्रृंगार करने के बाद में, और तुरंत वहां पर जो कीच होता है ना रज, उसमें लुटपुट हो जाते हैं। यशोदा माई भाग के आती है, अरे कैसा तू लाला, हाँ अभी तेरा श्रृंगार किया तुम सब कीचड़ में जाके लुटपुट हो गया, कैसा तुम, कैसे हो तुम, शायद तुम पिछले जन्म में सुअर होंगे इसलिए तुम कीच में लोटपोट हो रहे हो। तो कहते हाँ मैया मैंने सुकर का अवतार तो लिया था ना पहले। तो उनको लगता है कि बालक तो ऐसे ही बक रहा है, कुछ पता नहीं है, वो तो सत्य बोल रहा है, लेकिन वात्सल्य का और माधुर्य का इतना प्रभाव है कि उनको सब ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे ही बोल रहा है, बालक थी तोतली तोतली बोल। तो ये जो बिलोमल ठाकुर जी, हमारे जानते हैं आप बिलोमंगल ठाकुर जी, वो अंध भक्त हुए भगवान के, उन्होंने कृष्ण करुणामृत लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि त्वम सुकरोसी गत जन्म निपुत नारे। वो लिखते हैं अपने शास्त्र में कि वो माता कह रही है कि तुम पिछले जन्म में सुकर थे, और सुखदेव जी इस रज को अंगराग कहकर पुकारते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, क्योंकि एक होती है मट्टी जिसमें हम चलते हैं, और भगवान के शरीर को लगता है तो वो अंगराग दिव्य हो जाता है। हाँ? तो फिर इसका महिमा वर्णन करते हैं बिल मुगल जी की, 84 कोस जो भूमि उसका कण कण को भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त है, अनावृत चरण भगवान के केवल ब्रज भूमि को प्राप्त हुए हैं। और इसलिए जब भगवान का जन्म हुआ तब पृथ्वी इतनी पुलकित क्यों हुई थी, ये सोचकर हुई थी कि अभी मेरा शरीर जो है इनके चरणों के अलंकार से अलंकृत होगा, इसलिए वो उन्होंने अपने सब चमत्कार दिखाए, रात को फूल खिलना और जो जो दिखाया, यही भावना से कि अभी मेरा शरीर जो है इनके चरणों के अलंकार से अलंकृत होगा। इसलिए हर कण में ब्रज के भगवान के चरणामृत चरण चिन्ह हैं, कुछ अभी लुप्त हो गए, कुछ जगह अभी भी प्राप्त हैं। कहते हैं ऐसे शास्त्र में कि जितने अनंत वैकुंठ हैं, जो अनंत विष्णु के द्वारा नियंत्रित हैं, उन सारे वैकुंठ का क्या महत्व है, ऐश्वर्य, उतना ऐश्वर्य तो कहीं पर नहीं प्राप्त होता है, लेकिन सारे वैकुंठों का सारा ऐश्वर्य इकट्ठा करके कोई अगर ब्रज में आएगा तो वो उस सारे ऐश्वर्य से एक रज का कर्ण खरीद नहीं सकता है, क्योंकि उसमें वो ऐश्वर्य नहीं है जिसको हम खरीदना चाहते हैं उसमें वो प्रेम का ऐश्वर्य है, जो कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, वो ब्रज में प्राप्त होता है। उस एक रज के कर्ण के स्पर्श से, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रेम का जीव को प्राप्त होता है। तो इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान फिर वह श्रृंगार करके बाहर जाने लगते हैं, थोड़ा रेंगने लगते हैं, क्रॉलिंग। तो उनको माखन मही बढ़िया बढ़िया भोजन मुहैया कराती है ना, थोड़ा सा पेट उनका थोड़ा सा आगे रहता है। तो वो नंद भवन के बाहर निकलते हैं, तो वो सीढ़ियाँ उतरते हैं, कुछ सरिया उतरते हैं, फिर वापस उनको थोड़ा डर लगता है, फिर वापस जाना चाहते हैं। तब वापस जाते हैं तो फिर वो चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप देखें ना बालक कैसे वो प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसका दहलीज में आके पेट अटक जाता है यहाँ पर, और चरण अभी दूसरे स्टेप पे नहीं लग रहे हैं, लटक रहे हैं। उस वहां से ब्रह्मा जी और सॉरी नारद मुनि अंगिरा मुनि जा रहे हैं और देखते हैं कि देखो पर ब्रह्म लटका हुआ है। हाँ, अरे सारे योगी लोग नाक कान दबा के उसको क्या श्वास का अवरोध करके क्या कर रहे हैं, प्राणायाम उनका दर्शन करने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए। वो हंस पड़ते हैं, देखो इतना प्रयास लोग कर रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए, लेकिन ये कौन देख रहा है इसको कि लटक रहा है पर ब्रह्म यहाँ पर। और फिर रोने लगते हैं, क्यों रोने लगते हैं कि इतना प्रयास लोग कर रहे हैं, ध्यान तप तपस्या योग कर रहे हैं, कैसे दर्शन होगा इनको, जिसको जिसके 20 नाखूनों के द्वारा निकले गए अनंत किरणों का एक किरण भी ये पकड़ नहीं सकते अपने ध्यान धारणा से, वो परब्रह्म यहां पर नंद के आंगन में दहलीज पे लटका हुआ है ना। तो वो फिर वो कुछ समय के बाद थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अभी जो जिसके लिए मैं आया हूं वो करना आरंभ करना चाहिए, है ना। क्यों आए हो पता है आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहते हैं कि मैं वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पर गोपियों का मक्खन खाने के लिए आया हूँ, छाछ खाने के लिए आया हूँ, दूध और दही खाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे वैकुंठ का ऐश्वर्य भी इसके सामने तुच्छ लगता है। इनके द्वारा प्रेम से बनाया हुआ जो दही दूध मक्खन है उसका स्वाद उस ऐश्वर्य में भी नहीं है, उसको चखने के लिए मैं सब कुछ ऐश्वर्य छोड़कर आया हूं, और मेरी भगवत्ता मतलब भगवान का जो स्थान है उसको भी छोड़कर आया हूं। ये विशेष बात है, न केवल वो मैं भगवान हूं इस सत्य को छुपा कर आए हैं, और जिन जिन को पता है उनका भी ज्ञान वो छीन लेते हैं, उनको ब्रज में जन्म देने के पहले सब ब्रजवासियों का ज्ञान पहला छीन लेते हैं कि मैं भगवान हूं, तब जाकर उनका हृदय जो है ना वो एकदम सादगी वाला जो लीला है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। इनका भर उनका भी, दोनों के मन में कहीं ऐश्वर्य का भाव है तो फिर इनके लीला में भंग आ सकता है। इसलिए ब्रज में जन्म लेने के पहले सबका जो पूर्व जन्म का परम ज्ञान प्राप्त करके साक्षात्कार किया है उसको सब छीन लेते हैं। तो सामान्य बालक, सामान्य मित्र, सामान्य प्रेयसी प्रियकर ऐसे बनकर आते हैं, ग्वाल बाल ग्वारिया अनपढ़ गवार बनकर आते हैं, नंगे पैर घूमने वाले बनकर आते हैं, कोई आसन नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई पादत्राण नहीं, चप्पल नहीं, कोई कोई सिर पर मुकुट नहीं, केवल मोर मुकुट धारण करते हैं, वनमाला पहनते हैं, कोई राजवस्त्र नहीं पहनते हैं, राज अलंकार नहीं पहनते हैं, राज दंड ग्रहण नहीं करते हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं। देखो कितनी ब्रज की महिमा है कि वो जो जिसके लिए तपस्या करते हैं लोग जन्म जन्मांतर तक, उनके चरणों का एक किरण नहीं पकड़ सकते हैं, वो यहाँ पर नंद के आंगन में रेंगने के लिए आते हैं। इसलिए एक साधु ने नंद महाराज को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, बोले मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं नंद महाराज की पूजा करता हूँ कि साक्षात पर ब्रह्म उनके आंगन में उनको आनंद देने के लिए रेंग रहे हैं। तो इसके बड़े इससे बड़े व्यक्ति कौन हो सकते हैं, यशोदा और नंद के बड़े व्यक्ति और कौन हो सकते हैं, उनके आनंद देने के लिए तोतले तोतले बोल बोल रहे हैं। जो जग को चलाते हैं उनको मैया चलाने को सिखाती है, जो अपनी वाणी से पूरे विश्व को ज्ञानी बना देते हैं उनको मैया तोतले तोतले बोल बनाने को बोलने को सिखा रही है, जो पूरे विश्व को सृजन को निर्माण को नियंत्रित करते हैं अपने इशारे से, केवल इच्छा मात्र से वो उसका नियंत्रण उनकी माता करती है, उनको खड़ा होने का नहीं हो रहा, वो खड़ा पकड़ के खड़ा कर देती है, ये उनका भाग्य है सब लोगों का। और बार बार सुखदेव जी भी भागवत में और उनको प्रश्न भी करते हैं परीक्षित जी, और सुखदेव जी बोलते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से परम भगवान उनके मित्र बालक सखा और गौचालक बनकर ब्रज में प्रकट हुए, बार बार उनके भाग्य का गौरव करते रहते हैं। तो फिर कहते हैं अभी चोरी करने का जो हमारा कार्य है
प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत जो है घर में ही करनी चाहिए, प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस बाहर जाने के पहले। तो जाते हैं एक दिन अपने बड़े भवन में, बड़ा मटका रखा रहता है, बहुत सारे मक्खन के गोले रखे रहते हैं घर में, माता पिता कोई है नहीं, तो जाके एक बड़ा गोला निकाल कर रख देते हैं और अचानक सामने देखते हैं तो इतने सारे स्तंभ है यहाँ पर, पिलर्स हैं, मणि कंचन से बने हुए हैं सब। हाँ, मणिमय आंगन नंद के खेले दो भैया, सब जगह मणि मणिमय स्तंभ लगे हुए हैं, सब जगह अपने अपने प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही माखन चोरी करके हाथ छुपाते हैं तो अपने को ही देखते हैं, तो लगते हैं कि अरे कोई दूसरा भी है इधर। वो कहते हैं मैंने चोरी किया है, बताना नहीं किसको, तो वो भी वही बोलता है मैंने चोरी किया है, किसको बताना नहीं। फिर कहता है फिर अगर तुझे चाहिए तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो वो भी वही कहता है अगर तुझे चाहिए तो मैं तुमको भी दूंगा। फिर वो डांटने लगते हैं उसको, तो भी डांटने लगते हैं उनको, कहता मैया को मैं बताना, तो बोलते मैया को मैं बताना। थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो मैं बोल रहा है वही बोल रहा है। और ये जब हो रहा है तो रोहिणी यशोदा दूर से देख रहे हैं, देखो कैसे अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, ऐसे रेंगते हुए हाथ में मक्खन का गोला है, सामने भी गोला है, उससे बात कर रहे हैं। उतने में वो बुलाती है, कृष्ण क्वासी करो से किम, कृष्णा क्या कर रहे हो। तो ये जवाब नहीं देते क्योंकि अभी तुरंत सतर्क हो गया ना, अभी पता चला कि पीछे मैया है। तो कहते हैं कृष्ण क्वासी करो से किम, क्या कर रहे हो, तभी जवाब देता नहीं। फिर बोलते हैं कृष्ण क्वासी करो से किम पितृति, ए मेरे बाप क्या कर रहे हो तुम। पितृति यानी पिता, हे मेरे पिताजी क्या कर रहे हो तुम। तो कहते हैं मैया बड़ी समस्या हो रही है। बोले अरे समस्या तो बड़े लोगों को होती है, तुम्हें कैसे हो रही है, तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो गई हो कि इतने बड़े भवन को तुम छोड़ के जा रही हो दरवाजा खुला रखे। जैसे ही तुम गई एक छोरा आया, उसने माखन का गोला चोरी कर दिया, मैंने उसको डांटने का प्रयास किया, बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे भी वो ऐसे ही बताने लगा। मैंने उसको आग दिखाई तो मुझे भी उसने आग दिखाई, मैं डांटा तो उसने भी डांटा। तो मैया कहती है बेटा वो तो तुम्हारी परछाई है। तो कहता है मैया परछाई क्या होती है। तो कहते हैं परछाई वही है जो तुम्हारा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, तुम ही हो वो। तो तुरंत मुंह छुपा के मैया के गोद में छुप जाते हैं, मतलब पहली बार चोरी किया तो पकड़ा गया तुरंत। इसका भी वर्णन भागवत में है। तो उसके बाद में वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने मित्र मंडली है ना, सब लोगों को ऐसे ही बना देते हैं जैसे वो खुद हैं। सब लोगों को कहते हैं चलो चाहेंगे चोरी करने के लिए, तो सब निकल रही मंडली निकल रही है, तो उसमें एक गोपी बैठी हुई है और ये सब जा रहे हैं। तो गोपी कहते हैं अरे चोर कहाँ जा रहे हो आज। तो कह रहे हो थोड़ी मुझे चोर क्यों बुला रही हो मुझे आप, मैं चोरी वोरी नहीं करता। अरे हमारे घर में 9 लाख गाय है, पता है हमारी माँ पद्मगंधा गाय हमारे पास है जिसके दूध को कमल की खुशबू आती है, उसका दही जमाते हैं, उसका मंथन करते हैं, उसका मक्खन कमल पुष्प का गंध वाला वो मुझे खिलाती है, यहाँ तक खिला देती है, तुम्हारे घर में क्यों खाऊं मैं। नहीं नहीं लाला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आज घर में मेरे घर में मक्खन खाने को आ जाओ, एक ही शर्त है खाली तुम्हारे मेरे लिए कि तुम है ना उसको ढूंढ कर खाना है आज। वो क्या बोलते हैं आप, कौन सा गेम होता है आपका, वो ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट। तो वो सब जगह ढूंढते हैं, सब जाकर आज तो पूरा खुला एटमॉस्फेयर है ना, मतलब जाओ जहाँ चाहिए खा लो, लेकिन मिलना चाहिए ना कहीं भी नहीं मिलता है। तो इनको खुशबू आती है कि सब खुशबू जो है ना मक्खन की, वो ये गोपी के पास में ही है, वो बैठी हुई है एक चौकी लगाकर बैठी हुई है, इसी के सीट के नीचे वो है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं किसके नीचे है। वो क्या करते हैं गोपी, मटका मक्खन के गोले वाला उस पर चौकी रखती है, उस पर वो बैठ जाती है, मजा देख रही है। तो इसमें ठीक है बात नहीं, अपने दोस्त को इशारा करते जाओ बछड़ों को छोड़ दो। तभी क्या होता है ना, एक आध दो बछड़े होते हैं तो उसको बांध के रखते हैं, लेकिन बहुत सारे बछड़े होते हैं ना तो उनको एक कमरे में बंद करके कड़ी लगा देते हैं। तो ये बैठी है मजा दिख रही है, तो बालक जाते हैं और कड़ी खोल लेते हैं, 100 सैकड़ों बछड़े बाहर निकलते हैं, जाके अपने मम्मी को लगते हैं और सब लोग दूध पीने लगते हैं। और ये कहते हैं अरे गोपी क्या कर रही है बैठ के, देखो बछड़े निकल के दूध पी रहे हैं। तो गोपी तुरंत भाग जाती है, सोचते नहीं कि उसके नीचे मटका। गोपी जाते ही लात मार के वो चौकी को उड़ा देते हैं, सब सब लोग उधर से ऐसे आ जाते हैं ना, वो छोड़कर वहां से आ जाते हैं, और सब लोग मिलकर वो गोला खाते हैं, सब दोस्तों को बांटते हैं, बंदरों को भी बांटते हैं। उतने में वो कितने लोग, कितने बछड़ों को संभालेगी वो, सब लोग लगे हुए अपनी मैया का दूध पीते हुए, सब दूध पी जाते हैं, फिर आराम से निकल के कमरे में बंद हो जाते हैं। फिर ये लौट के आती है, बोलते देखो चालाकी किया ना हमारे साथ में, अगर हमें उल्लू बनाने के बदले में अगर साफ साफ सिंपल तरीके से दिया होता ना, तो शाम के लिए दूध बचता। अभी ना दूध बचा ना मक्खन बचा, दोनों खत्म हो गया, ऐसे कहते हैं। तो उसके बाद में वो सब लोग कंप्लेन करने जाते हैं मैया को। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन दिया है, कहते हैं तुम्हारा लाला जो है ना बहुत शरारती है, हमारे घर में आके मक्खन चुराता है, हमारे बछड़ों को छोड़ देता है वो। तो मैया कहते हैं अच्छा है ना तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वो, जब दूध का निकालने का समय आता है तो बछड़ों को छोड़ना भी एक बड़ा काम होता है ना, इतने बड़े बछड़े होते हैं, इतनी गाय होती है, तो एक एक को छोड़ना। बोले तो नहीं, वो दूध निकालने के 2 घंटे पहले ही छोड़ देता है, हम जब जाते हैं दूध दूध निकालने को तो केवल लात मिलती है हमको, दूध नहीं मिलता है। बोला तो अच्छा, माँ कहते हैं तुम उसको डांटा करो थोड़ा सा। बोले तो हाँ हम डांटते हैं उसको, लेकिन वो डांटते नहीं, हम जब डांटते ना तो वो हंसता है, और जब वो हंसता है ना हमारा क्रोध सब पिघल जाता है। एक ऋषि ने लिखा है, बढ़िया श्लोक लिखा है, उसमें कहते हैं कि जब ये कृष्ण भगवान मुस्काते हैं ना, वृंदावन बिहारी जी जब स्मित हास्य करते हैं ना, तो सबका ज्ञान बुद्धि क्रोध सारे जो विकार है सब भ्रष्ट हो जाते हैं, कुछ टिकता नहीं है। हाँ, एंगर, नॉलेज, शांति, योग, संयम, ध्यान सब खत्म हो जाता है जब ये स्मित हास्य करता है। तो कहते हैं काम करो फिर तुम अपने मक्खन को अंधेरे में रखा करो। हाँ हमने वो भी कर दिया, लेकिन ये जब भी आता है ना इसके शरीर से नीला प्रकाश निकलता है, अंधेरे में भी दिखाई नहीं पड़ने लगता है और ढूंढ के निकालता है। तो मैं कहती हूँ उसको ऊपर टांग के रखो लंबा एकदम। बोले वो भी कर लिया हमने। ये लोग फिर क्या करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और उसको निकाल के खाते हैं। तो फिर क्या करें क्या उसको, तो फिर कहते हैं कि वो बात नहीं मैं डांटूंगी उसको। तो घर जाके पूछते क्यों रे लाला तुम सबके जाके घर में मक्खन खाता है। तो बोलते देखो मैया, उनके खुद के ही बालक चोरी करते हैं और मैं वो डांट मुझे लगती है, क्या कहते हैं उसको, नाम मेरा आता है, मैं बताऊंगा आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा। तो एक गोपी के घर में जाते हैं, गोपी कहते हैं कि इतना बहाना बनाने के बाद भी मैया हमको कहती है कि तुम तो बहाने ही बनाते रहते हो और बार बार कंप्लेन करते हो, एक बार तो लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ ना, तो मैं समझ लूंगी कि तुमको जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। और वो भी क्यों जा रही है, देखो कैसा है ना, प्रभावती जी है उपनंद बाबा की पत्नी है, बड़े बाबा उपनंद बाबा उनकी पत्नी प्रभावती है, और प्रभावती जी जब आ रही है कंप्लेंट करने के लिए तो वो कंप्लेंट यशोदा को कर रही है और देख रही है घर में, समझो मैं आपको कंप्लेंट करना है लेकिन मैं यहाँ बोल के कंप्लेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे इंटरेस्ट नहीं, मुझे वो देख रहा, कन्हैया का दर्शन अगर हो गया तो फिर वो कंप्लेंट करने के बाद वो जवाब देगा तो मीठी मीठी बातें सुनाई पड़ेगी उनको ना, अकेले में घर में बैठना मुमकिन नहीं है, उनको कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, उनकी मीठी मीठी वाणी सुननी चाहिए, इसलिए बहाने बनाकर वो कंप्लेन करने को आती थी। और घर में मक्खन भी बनाती थी कि मेरे घर में आज वो चोरी करने आ जाए, इसी भावना से। तो एक दिन गोपी ने कहा कि अभी हम लोग को रंगे हाथ पकड़ेंगे, तो वो गोपी ऐसे सोने का बहाना करके सो गई। तो कृष्ण भगवान अंदर गए, उसने क्या किया सब दोस्तों को बुलाया और मक्खन चोरी किया, उतने में गोपी उठ गई, सब ग्वाल वाल भाग गए और कृष्ण को पकड़ा गया। तो कहते आज मैं मैया के पास तुम्हें ले जाऊंगी और दिखा दूंगी पहली बार कि मैं जो कितनी दिन से कह रही थी वो सच है, ये चोर को मैंने आज रंगे हाथ पकड़ा है। तो एकदम दीन बन जाते हैं कृष्ण, कहते हैं गोपी देखो मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा, वादा करता हूँ तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। नहीं नहीं पहली बार मिले हो, आज भी अच्छा मौका है, मैया को इतनी बार मैंने कहा उसका आज प्रमाण मुझे मिल रहा है, कोई बात नहीं। बोले देखो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतने भरे रास्ते में मुझे ले जा रही हो, हाँ तुम्हारे जेठ तुम्हारे ससुर सब रास्ता में खड़े, तुम ऐसा जा रही हो, कुछ शर्म नहीं आ रही तुम्हें मर्यादा की, थोड़ा घूंघट तो ओढ़ लो। तो तुरंत हाँ रही देख रहे, तो होश में आती है, सब लोग खड़े हैं बड़े बड़े जेठ लोग, तो घूंघट खड़ा कर देती है। बाद में कहते हैं कि गैयाओं की सेवा करके तुम्हारे हाथ कितने सख्त हो गए, जानते हो मेरे कलाई कितनी कोमल है, कितनी नाजुक है, तुम इतने इतने कसके पकड़ा हुआ है, देखो जहाँ पकड़ा हुआ है उसके आगे कितना लाल हो गया है, देखो मेरी उंगलियाँ कितनी सूज गई है, कम से कम तुम्हारा हाथ तो बदल लो। उसके पहले बोलता है कि देखो मेरे कई लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं क्योंकि मैं निकल जाता हूं और ये पकड़े जाते हैं तो ये मार खाते हैं, तो आज मुझे पकड़ा हुआ देखकर वो तालियां बजा रहे हैं। और कई सखियां जो भी तालियां बजा रही हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे थोड़ा तुम्हारे घूंघट में छुपा लो, तो घूंघट में छुपा लेते हैं, बाद में वो हाथ की बात करते हैं। तो उसको लगता है ठीक है, अभी ठीक है, अभी हाथ बदलने में क्या है उसमें। उतने में प्रभावती के बालक को इशारा करते हैं और घूंघट के अंदर लेते हैं, और जब वो हाथ बदले करते उसका हाथ उसके हाथ में देते हैं। और वो अपना लेफ्ट राइट करके जा रहे हैं, उसको इतना आनंद है कि आज मैंने पकड़ा है इसको रंगे हाथ, तो पकड़ में नहीं आता है, आज पकड़ा मैंने उसको। पीछे से भाग के नंद भवन के कई दरवाजे हैं, उसमें प्रवेश करके बिस्तर में सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उठते हैं, मैया भूख लग रही है, कुछ खिलाओ मक्खन, तो मक्खन खिलाते हैं उसको। उतने में आती है, अरे यशोदा कहाँ हो तुम, तुमने कहा था ना वो लाला को पकड़ के लाई हूं मैं आज। लाला तो उसके पीछे है, उसका भी मक्खन खिलाया उसने। बोले बाबड़ी है गई ये गोपी, पागल हो गई है, हाँ क्या बात कर रही है, तो मेरे पास में बैठा है तू। बेटा तुम कहाँ गए नहीं आज? नहीं मैया मैं आज बहुत थोड़ा सा बीमार हो गया था, मैं कहीं नहीं गया, आज मैं आज इधर ही सोया था। तो आती है, देखो भाई प्रभावती क्या हुआ, लो लाला को तुम्हारे सामने पकड़ के लाई हूँ। तो सब घूंघट निकालती है तो उसके हाथ में उसका ही बच्चा, ठीक, तो एक तमाचा लगाती है उसको, तू यहां पर क्या कर रहा है। तमाचा क्यों लगाती है उसको, क्योंकि अरे इतना आनंद मिल रहा था भगवान के बुझाओं का स्पर्श करते हुए, इतना आनंद का अनुभव था कि तू बीच में कैसे आ गया। और वो बेचारा परेशान हो गया, तमाचा खा रहा है। कृष्ण उसको इशारे से बोल रहे हैं, भैया मेरी प्रतिष्ठा को संभालने के लिए एक आध दिन मार खाए तो चलेगा, कल जब माखन चोरी करेंगे तो मटके का उद्घाटन तुम्हारे से करेंगे। तो फिर ये गोपी बाबरी बहुत शर्माती है और वो बहुत संकोच करते हुए सर झुका के चले जाते बाहर अपने बेटे को लेकर। तो ये पीछे से आके मिलते हैं उसको, मैंने कहा था ना पछताओगी, मैंने कहा था ना पछताओगी, अभी इस बार तुम्हारा बालक तुम्हारे हाथ में दिया है, अगली बार तुम्हारे पति का हाथ दूंगी, तुम्हारे खसम को दूंगी, फिर क्या होगा तुम्हारा, इसलिए दोबारा मत करना। तो ये हो गया मक्खन की चोरी। तो एक दही की चोरी की भी कहानी, थोड़ा देर हो जाएगी लेकिन बता देंगे। तुमने मक्खन का भी चोरी किया है, दही की भी चोरी की है, दूध की भी चोरी की है, कपड़ों की भी चोरी की है, उसके बाद सबके हृदय की भी चोरी की। तो वो दही की चोरी करने के लिए एक गोपी के घर जाते हैं, और वो कैसा है ना, अधोटा दही कहते हैं उसको। अधोटा मतलब क्या है, उसको उबाल के ना दूध को आधा कर देते हैं, फिर उसका दही जमाते हैं, वेरी नाइस थिक, उसके और मलाई भी जमती रहती है। तो ये क्या जाते हैं उधर, चढ़ते हैं और पूरा मलाई खा लेते हैं, दही भी खा रहे, उतने में गोपी उठ जाती है, कह रहे कन्हैया क्या कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि देखो आप गोपी, आप बुढ़ी हो गई हो, आपकी नजर कमजोर हो गई है, मैंने देखा, मैं जा रहा था यहां से, पहले तो बोला कि मैं बाय मिस्टेक तुम्हारे घर पे आ गया ये सोचकर कि मेरा ही घर है। अरे ठीक है ठीक है, आए तो अच्छा, बट कर क्या रहे हो। तो कहते कि मैंने देखा, मैंने गलती से तुम्हारे घर पे आया, मेरा घर समझ के। गोपी कहते नहीं नहीं तुम्हारे घर मेरे घर को अपना ही घर समझना, कभी भी आ जाना, लेकिन कर क्या रहे हो। कहते मैं देखा जब आया तभी कि तुम्हारे इतने कीमती दही में चेटी लग रही है, और मैं उसको सोचा कि तुम उसको, तुमको तो दिखाई नहीं पड़ेगा चेटी, और तुम मंथन करोगे तो सब चेटियां मर जाएगी, तो मैंने सोचा कि चेटियों को निकाल देना चाहिए, तो मैं निकाल रहा था चेटियों को। तो कहते अच्छा, तो चेटियों को निकालने के समय तुम्हारे केवल अंगुली के अग्रभाग में दही लगना चाहिए ना, आप ऐसे निकालोगे ना दही, तुम्हारा तो पूरा हाथ में दही लगा हुआ है। तो जब मैं निकाल रहा था ना, तो मेरे मैया ने मुझे ऐसे अलंकार में रत्न पहनाए थे, कंगन जो बहुत गर्म होते हैं, मैंने किसी बैल से सुना था आज मैया से बात करते हुए कि ऐसे गर्मी होने पर हाथों को दही में डुबाना चाहिए। तो मैंने दो दही में जब डुबाया तो मुझे बड़ा आनंद मिला, तो मुझे विश्वास हुआ जो वैद्य कह रहे थे वो सही है। अच्छा तो फिर कहते तुम्हारे मूड़े में जो लग रहा है उसका क्या। कहते जब मैं चेटियों को निकाल रहा था ना, तो कुछ चेटियां हाथ पे आ गई, वो चढ़ते 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 भुजा पे आ गई, फिर कंधे पे आ गई, फिर गले में आ गई, फिर गाल पे आ गई, गाल पे होठों पे कई चेटियां आ गई। तो मैंने जो ये हाथ लगा हुआ था वो निकाल के ऐसे निकाल दिया उनको, जब निकाल दिया तो कुछ दही मेरे होठों पे लगा। अभी आप बताओ, दही जैसी चीज होठों के ऊपर आ गई तो उसको चाटने में कोई पाप लगता है क्या, कोई अपराध है क्या। तो मैंने उसको चाट लिया, देखो मैं ऐसे चाट लिया ऐसे करके, और खा के दिखाया उसको ऐसे खा के। तो कहता है, कहते हैं कि तुम बड़े चालाक हो, तुम बड़े चोर हो। तो कहते हैं मैंने दही खाया तुमको अच्छा नहीं लगा ना, नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे करके हाथ पोंछ के चला जाता है। फिर दूध की चोरी, तो उसको भी अधूरा दूध कहते हैं जिसको उबाल के आधा करते हैं, उसमें फिर वो किशमिश काजू बादाम केसर सब डालते, बड़ा इट्स लाइक समथिंग लाइक रबड़ी बना देते हैं उसका, लेकिन वो प्रवाही होता है हाँ फ्लूइड। तो वो लटका के ना जाते हैं किसी गोपी के घर पे, तो देखते हैं कि उसमें घंटी लगी हुई है, खूब तो चढ़ते हैं ऊपर और देखते हैं कि घंटी लगी हुई है। तो वो मधुमंगल बोलते हैं अरे ये तो घंटी लगी हुई है तो बजेगी, बजते ही वो सोई हुई गोपी जगेगी। ऐसे कई कथाएं हैं, आपको एक स्पेशल एक बता रहा हूँ। तो क्या करें, तो बोले कोई बात नहीं मैं घंटी से बात करूंगा। तुरंत अपने ऐश्वर्य का सहारा लेते हैं, बोले घंटी तुमको नहीं बजना है, मेरा आदेश है। हाँ ये मेरी मर्यादा है, आप मेरे लिए बनाई हुई कि मैं जब खाता हूं तो कोई आरोगता हूं तो आपको बजना है, ये मर्यादा है, लेकिन आज को मैं आदेश दे रहा हूं कि आपको नहीं बजना है। तो बोले मैं तो आपके आदेश के बाहर नहीं, मैं क्यों बजूंगी, आपका आदेश है तो मेरे लिए सर आंखों पर है, मैं नहीं बजूंगी। तो वो लोग डंडा लेते हैं दूर से और उसको एक गड्ढा बना देते हैं, उसको पूरा धार लगती है, सारे ऐसे चप 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 पीने लगते हैं। तो मधुमंगला के एक धक्का देता है कृष्ण को, तो वो हट जाता है, उसके ऊपर अभिषेक होने लगता है। अभी घंटी देख रही है कि आरोगा तो उन्हें दही तो आरोग तो दिया, अभी अभिषेक भी हो रहा है। अभी जब भगवान का अभिषेक होता है और वो भोजन करते हैं तो मेरी मेरा काम है बजना, अगर वो इतनी भाव विभोर हो जाती है कि वो भूल जाती है उसने क्या कहा, नहीं मेरा भाग्य है आज बजना, दोनों साथ में हो रहा है तो मुझे बजना ही चाहिए, बजने लगती है। जैसे बजती है गोपी उठ जाती है और आके पकड़ लेती है कृष्ण। तो उसकी एक कहानी ऐसी है कि वो भागते हैं तो कृष्ण भगवान भाग जाते हैं, तो फिर जब भाग जाते हैं तो मधुमंगल बेचारा अटक जाते हैं, वो खिड़की से भागते हैं सब लोग, तो इसका पेट जो है ना वो खिड़की से बड़ा रहता है, ऊपर से ग्वाल बाल खींचते, नीचे से गोपियां खींचते हैं, तो वो नीचे से गिर जाते हैं। उसको इतना पीटा, इतना पीटते हैं तो वो पुकारता है कृष्ण बलराम बचाओ बचाओ। तो फिर वो कृष्ण बलराम सुनते हैं अरे बेचारा ब्राह्मण का बालक अटक गया, उसको छोड़ के जाना अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। वापस घूम के आते हैं, बोलते हैं गोपियों तुम लोग कितने सोचते नहीं हो, ब्राह्मण का पुत्र है, सांदीपनि का पुत्र है, ये नंदी मुखी का भाई है, अगर जनेऊ का धागा लेके तोड़ दिया ना इसने तो शाप देगा आपको, आपका विवाह ऐसे बुढ़े से होगा जिसकी 7 शादियां पहले हो चुकी है। तो गोपियां बेचारी बावड़ी सुंदर तब सिंपल हार्टेड डर जाती है, बोले माफ करते हैं, पैर छूने लगती है, क्या करें। तो बोले मधुमंगल अब तक ऐसा एकदम ऐसा मार खराबी एकदम खराब, सब लोग जाके लड्डू बनाओ, कोई लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, सब लोग आके लड्डू लगा, लड्डू बना के लेगा, सब घर जाके लड्डू बना के लेके आते हैं, उसको गैवर कुंड के आसन पे बिठाती है, भोग लगाती है, आरती पूजा करती है उसकी, और ये बड़े चाव से एक एक लड्डू बड़े प्रेम से खाता है, उसको दक्षिणा देते हैं, वस्त्र देते हैं, पैर छूते हैं, बोले आशीर्वाद दो, माफी चाहते हैं, आशीर्वाद दो, कहते हैं मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा विवाह उस बुड्ढे से नहीं होगा जिसकी 7 शादियां हो चुकी हैं, तुम्हारा विवाह उससे होगा जो तुम्हारे मन में है। इस तरह से भगवान माखन चुराने का लीला करते हैं सब लोगों का। और माखन क्यों चुराते हैं वो, क्योंकि वो गोपियों का प्रेम है, उसको चुराने के लिए आते हैं। हमारा हृदय में माखन की तरह मुलायम होगा तो उसको भी चोरी करेंगे, यही भक्ति है और ये साधना है कि अपने पत्थर जैसे हृदय को माखन जैसे मुलायम बनाना है, माखन जैसे बनाना है, स्वादिष्ट बनाना है, ताकि चोरी करने के लिए श्री कृष्ण आ जाएं। इसलिए हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका भी समय हो गया कि है कुछ समय, क्योंकि आज सोमवार है ना, शंकर भगवान का दिन है आज, सब लोग उनका याद और स्मरण करना चाहिए। और शंकर भगवान का दो दो टाइप का पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी ऑफिशियल है जिसमें वो त्रिगुण तमोगुण के इंचार्ज हैं, सर्व विनाश करते हैं, आँख खोलते हैं, कभी जला देते हैं किसी को, और नटराज के रूप में आशीर्वाद देते हैं, कलाओं का वरदान देते हैं, बहुत सारा उनका ऑफिशियल ड्यूटी है। लेकिन बोलते हैं ना रियल यू द रियल शिवा इज डिफरेंट, वो भगवान के परम वैष्णव है। जैसे नदियों में गंगा है वैसे वैष्णवों में शंकर जी हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्नगानाम यथा गंगा, पुराणोमी भागवतम इदम, ऐसा श्लोक भागवत में 11वें स्कंद में है, वैष्णवानाम यथा शंभु, और क्या आगे 4 भाग है उसके, देवानाम अच्युतोयम, भगवान सभी देवताओं में भगवान श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, और चौथा क्या बताए, भागवत पुराण, नदियों में गंगा, देवताओं में भगवान अच्युत, और वैष्णवों में शिवा शिवजी, और शास्त्रों में भागवत पुराण, यहाँ भी संपर्क है उसका। तो शंकर जी, बीच में क्या हुआ कि जब भी बहुत आतंक हुआ, पुतना आई, शकटासुर आया, तृणावर्त आया, तो उन्होंने सोचा कि भी जमुना जी का किनारा सुरक्षित नहीं बचा, इधर से तो लांग दिया जमुना जी को, तुरंत मथुरा से राक्षस आ जाते हैं, दिन रात हमारे बेटे आतंक में रहते हैं, हमको छोड़ के जाना चाहिए। तो फिर वो छोड़ के चलते हैं वहाँ से, वृषभानु महाराज भी निकलते हैं और ये भी निकलते हैं। छठी करा में वो एक तंबू लगाते हैं, नंद महाराज, वृषभानु महाराज तंबू लगाते राधा कुंड के पास बसती गांव में, लेकिन शास्त्र में वर्णन क्या आया है कि दोनों के तंबू एक दूसरे से लगे हुए थे। आज की तारीख में छठीकरा और बसती 28 किलोमीटर दूर है, इतने विशाल तंबू थे उनके। तो जब निकलते हैं ना वहां से, तो सब लोग बैलगाड़ी में बैठे हैं, नंद महाराज, यशोदा, सब गोद में बैठे हुए हैं, तो कृष्ण भगवान भी बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं इधर उधर। तो एक गोपी 125 ईयर्स की बुढ़ी है, वो क्या सोचती है कि काश कृष्ण भगवान मेरे गोद में चलते। ईर्ष्या नहीं हो रही, लेकिन ऐसा हृदय में भाव आ रहा है कि काश मेरे गोद में वो चलते तो कितना अच्छा, लेकिन मैं तो सीधी साधी गोपी हूँ, गरीब हूँ, वो तो रानी माता है, उनका तो मखमल का गलीचा है, उसमें गोद में बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं, दिनों के नाथ है भगवान, वो सबके हृदय की भाव समझते हैं, वो मन में ठान लेते हैं कि इसको गोद में मुझे बैठना है। तो पूछने लगते हैं मैया को, ये कौन है? तो कहते हैं कोयल है, बाजू में कौन है? उसका पति। ये कौन है? मोर है, बाजू में कौन है? मोरनी है। वो कौन लगती है? पत्नी है। ये कौन है? तोता है, बाजू में कौन है? मैया, मैना। कौन लगती है? पत्नी है। ऐसे सबका जोड़ियों का क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम रोने लगते। फिर वो कहते हैं क्यों रो रहे बेटा तू? बोले सबकी बहू है, केवल मेरी बहू नहीं है, मेरी भी बहू चाहिए। उसने कहते बेटा अब छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा विवाह कर देंगे अच्छी सुंदर कन्या को देखकर, तभी बहू आ जाएगी। नहीं 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 मुझे अब भी बहू चाहिए। और रोना शुरू कर दे। आप देख जानते हो जब रोते हैं ना भगवान, सब ब्रज रुक जाता है, सब बैल रुक जाते हैं, सब बैलगाड़ी रुक जाती है, सब सखियां आती है, क्या करें अभी, कन्हैया रो रहा है कुछ, सबका दिमाग बंद हो जाता है, क्या करें। तो सखियां सोचती हैं कि अभी ऐसा करना चाहिए, हम सब लोग खड़े होते हैं गोपियां, इसको कहते हैं कि तू जिसको पसंद करेगा वो तू मेरी बीवी। तो सब गोपियों को सामने खड़ा करके कृष्ण भगवान को दिखाते हैं, तो वो हर एक को देखकर ना कर देता है, सॉरी करोड़ों गोपियां हैं सबको ना कर देता है। और जब वो बुढ़िया आती है ना 125 ईयर्स की, उसको हाँ करके उसको गोद में बैठ जाते हैं, तो लोग जोर से हंसते हैं, बोले क्या जोर की बहू चुनी है, इसके भी मुंह में दांत नहीं, तेरे भी मुंह में दांत नहीं है, बोले परफेक्ट जोड़ी है। वहां छठीकरा से लेकर पूरी नंदगांव की यात्रा उस बुढ़िया के गोद में करते हैं। देखो कैसे हमारे भगवान है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं, आपके हृदय में भाव है तो जो इम्पॉसिबल है तो भगवान पॉसिबल कर देते हैं। इसी की कथा लगी हुई आगे की, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली। तो जब पहुंच गए तो शिवजी महाराज वहां पहुंचे दर्शन करने के लिए, ऋषि का रूप धारण करके आए, भवती भिक्षान देही, नंद भवन के सीढ़ियां चढ़ के गए, मैया आई थाली लेकर, मणि मणि मोती धान्य मिठाई सब लेकर आई। तो कहते हैं हमें ये दीक्षा नहीं चाहिए। तो बाबा तुम्हें क्या चाहिए? कहते हमें लाला के दर्शन चाहिए। तुरंत घंटी बजते मन में, ये ऐसे क्यों मांग रहा है, मतलब कुछ छल कपट है इसके अंदर। वो कहते हैं तुम लोग सब कंस के दूत हो, कभी अच्छी कन्या बनकर आते हो, सुंदर कन्या, कभी बैल बनकर आते हो, कभी गाड़ी बनकर आते हो, कभी हवा बनकर आते हो, आज ऋषि बनकर आए, तुम्हारे यहां तक मजाल कि तुम साधु का रूप धारण करके हमें ब्रजवासियों को चीट करने के लिए आ गए, लेकिन मैं नहीं चीट होने वाली, चले जाओ यहां से, चाहे तो ये ले लो नहीं तो चले जाओ करके मुंह पे दरवाजा धाड़ करके बंद कर देते। भी शिवजी महाराज बड़े व्याकुल हो जाते हैं, इतना कैलाश से आया हूं क्या करूं, वहीं जाकर बैठ जाते हैं सामने वाले वन में और रोते हैं, बहुत बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, जैसे आशा जो लेकर आए थे उसमें निराश हो गए ना वो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान से सब लोग सुनिए कि जो सबसे बड़ी निराश अवस्था में भी आशा को देखता है वो कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर लेता है. इफ यू सी होप इन द मोस्ट होपलेस कंडीशन देन यू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. तो ये निराश भी क्या चांस है. देखो मैया के पूरे नियंत्रण में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, अपने आप को उनके समर्पित कर दिया उन्होंने ना. अभी मैया सबसे बड़ी पावर है वहां पर, वो अगर ना बोल देते वो नंदा महाराज की भी छाती नहीं उनको बताने की कुछ, तो क्या करेंगे, रोना शुरू कर देते. जो रोते हैं तो भगवान को भी बड़ा बुरा लगता है कि मेरा भक्त रो रहा है, कुछ करना चाहिए, तो वो भी रोना शुरू कर देते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र निकाल देते हैं, इतना रोते हैं. जो जो रोज के उपाय हैं शुरू करते हैं ना, और जोर से रोते हैं, दूसरा उपाय और जोर से रोते हैं, तीसरा उपाय और जोर से रोते हैं, इतना जोर से रोते हैं कि सारे उपाय फेल हो जाते हैं. उतने पूर्णमासी आती है. पूर्णमासी कौन है? पार्वती जी का अवतार है. उनको पता है जो आए थे वो कौन है, तो हमारे पति हैं, कैलाश से दूर से आए हैं. यशोदा को कहती है, क्योंकि अभी जब क्या होता समस्या होती है ना, तो वो गुरु जी अपने गुरु है ना पूर्णमासी, उनको बुलाती है. पूर्णमासी कहते हैं जो आए थे ना वो बड़े महात्मा है, वो बड़े दूर से आए हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उन्हीं को बुलाओ, उनके आशीर्वाद से शायद रोना बंद कर देगा. यशोदा का भाव देखिए आप. उसी व्यक्ति को उसने कुछ दिन पहले दरवाजा मुंह पे बंद करके भगा दिया है, चले जाओ यहां से, कभी यहां पर मत आना, कतई तौर पर दर्शन नहीं मिलेगा आपको, आप सब लोग डाकू हो, राक्षस हो, ऐसा करके भेज दिया है. और वही उन्हीं को बुलाने को राजी हो जाती है. अगर हम आप जगह होते, आप सोचिए, अगर आप वो होती, हाँ, इनको अभी धक्का मार के बाहर कर दिया आपने, और अभी उनको ही बुलाने का आपको प्रस्ताव दिया जा रहा है, आप कहेंगे मैं तो नहीं जा सकती, आप चाहे किसी और को बुलाओ, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती. उसी को बुलावा भेजती हूँ अपनी तरफ से. और शंकर जी महाराज भाग के आते हैं और रोते हुए लाला को, जोर से रो रहे, ऐसे ही साधारण रोना नहीं है, वैसा ऊ नहीं, पूरा नंद भवन हिला हुआ है उससे, सब परेशान है, सब खाना पीना छोड़ के बालक के पीछे लगे हुए हैं. वो रोते हुए बालक को लेके आते हैं और शिवजी महाराज आके चरण का स्पर्श कर देते हैं. जैसे चरण का स्पर्श करते हैं, बालक रोना बंद कर देता है. तब मैया क्या बोलती है? मैया बोलती है, अभी तुम यही रहना, अगली बार जब रोएगा ना तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, जब जब लाला रोवे तब तक दर्शन दीजो. मतलब क्या हुआ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, शिवजी महाराज महादेव हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी सबसे बड़े देवता हैं, उनके पुत्र हैं वो, फिर भी वो शिव जी की पूजा करते हैं. और एक ही महादेव है, ब्रह्मा भी महादेव नहीं है. वो महादेव भगवान के लिए खिलौना बने, बने कि नहीं बने? जब रोते हैं कोई तो क्या यूज करते हैं, खिलौना यूज करते हैं. तो यशोदा मैया ने शिव जी को खिलौना बना दिया और वो बन भी गए. बोलते हैं तुम यहीं रहो और मैं इनको भोग लगाऊंगी, पहला भोग आपको लगाऊंगी, उसके बाद में इनको जो भी अभिषेक करूंगी वो जल भी पहले आपको पिलाऊंगी, आप यहीं रहो. और वो वहीं रहे, उधर नंद भवन के नीचे नंदीश्वर महादेव का मंदिर है. भाव देखिए आप. हाँ, तो आज सोमवार का दिन है, आप शंकर भगवान को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि उन्होंने भगवान की आशा कैसे करनी चाहिए उसका एक सुंदर उदाहरण वहां पर हमको दिया है. कैसे हमें कभी भी कितनी भी निराश अवस्था होगी तो भी भगवान पर भरोसा रख के आशा को छोड़ नहीं देना चाहिए, अपना प्रयास करते रहना चाहिए. आशा को बरकरार रखते हुए तो भगवान अपनी कृपा करके जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर देते हैं. बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.